Let's go. Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Jana Vallabha Girivaradhari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Jana Vallabha Girivaradhari Yashoda Nandana Prajana Ranjana Yashoda Nandana Vraja Jana Ranjana Namonati Ravana Chari Namonati Ravana Chari Madhava Kunja Vihari Jaya Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Rama Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Ram Ram Hare Hare
भद्रेषु नित्यं भागवतेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी अमुज्ञानविरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया शैक्षरन्मलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यामनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामह्यं ददातीत्वा पदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सहगृजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगणालिता श्री विशाखान्वितांश नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेषाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेषाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धांत सरस्वती नामिने श्रीवाष्टभानवे देवे नयताय कृपाब्धये कृष्णसंबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः माधवचल प्रेमज्ञ श्रीरूपानुगा भक्तिदा श्रीगौरा करुणाशक्ति विग्रहाय नमोस्तुते नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुगा विरुद्धाप सिद्धांतद्वान्तहारिणे नमो गौरकिशोराय साक्षाद्वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बारसाम्बोधे पादाम्बुजाय ते नमः नमो भक्तिविनोदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्तिस्वरूपाय रूपानुगावराय ते गौराविर्भावभूमे त्वं निर्देशजनप्रियः वैष्णवसार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णचैतन्य नाम्ने गोरक्षिषै नमः पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपं सावदारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं हे कृष्णकरुणासिन्धौ दीनबन्धौ जगत्पदे गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते जयतां शरतोर्पङ्गुर्मामन्दमतेर्गति मत्सर्वस्वापदाम्बोजौ राधामदनमोहनो दिव्यदृन्दारण्यकल्पद्रुमादः श्रीमद्रत्नागारसिंहासनस्थौ श्रीमद्राधाशीलगोविन्ददेवो वैश्रालिभिसेव्यमानो स्मरामि श्रीमान् रासरसारम्भि वंशीवटतटस्थिता कर्षं वेणोस्तनेर्गोपीर्गोपिनाथा श्रियस्तु न सप्तकाञ्चन गौराङ्गे राधे वृन्दावनेश्वरि वृषभानुसुते देवि प्रणमामि हरिप्रिये जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्रीयद्वैतगदाध श्रीवासादिगौरभक्तवृन्द हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज नरसिंह जयंती है, भगवान नरसिंहदेव का प्राकट्य दिवस, उनके उपलक्ष्य में आज हम नरसिंह देव के जो लीलाएं हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। श्रीमद् भागवतम के सातवें स्कंद में भगवान नरसिंहदेव का लीला का वर्णन हुआ है। सातवां स्कंद के पहले जो 10 अध्याय हैं वो भगवान नरसिंहदेव की लीलाओं का वर्णन करने वाले हैं। वैसे देखा जाए नरसिंहदेव की जो लीलाएं हैं वो, या इनकी लीला जो है बहुत कम समय के लिए हुआ है, थोड़ी समय के लिए उनका प्रकट हुआ हिरण्यकश्यप को वध और देवता लोगों ने उनका स्तुति किया, प्रहलाद जी ने स्तुति किया और वो वापस अप्रकट हो गए। लेकिन इनकी लीलाओं को वर्णन करने के लिए भागवतम में 10 अध्यायों को स्थान दिया है, तो इससे पता लगता है कि कुछ विशेषता है। खास करके प्रत्येक साधक के जीवन में नरसिंहदेव की विशेषता ज्यादा है, तो थोड़ा सा नरसिंहदेव के जो वर्णन करने में कुछ मंत्र हैं या कुछ श्लोक हैं जो श्रीधर स्वामी के द्वारा लिखा हुआ है, पहले उनको उच्चारण करते हैं। अगर कोई भागवत को भी समझना चाहता है तो भी नरसिंहदेव की कृपा के बिना हम भागवत को नहीं समझ सकते कि नरसिंहदेव के वदन में मुख में संवित शक्ति निवास करती है। तो जब तक वो संवित शक्ति का आवेश नहीं होता है तब तक भागवत का ज्ञान भी प्राप्त नहीं होता है। इसलिए कहा गया है कि स्वयं श्रीधर स्वामी कहते हैं या उनके विषय में कहा गया है या भागवत के विषय में कहा गया है कि व्यास वेत्ति न वेत्ति श्रीधरम सकलम वेत्ति नरसिंह प्रसादये। नरसिंहदेव के प्रसाद उनकी कृपा की वजह से श्रीधरम सकलम वेत्ति, श्रीधर स्वामी जो भागवत के ऊपर टीका किए हैं वो भागवत के ऊपर पूरा जानते हैं। ये शिवजी कहते हैं अहम वेत्ति सुखो वेत्ति, मैं जानता हूँ सुखदेव गोस्वामी जानते हैं। व्यास वेत्ति न वेत्ति, व्यास देव जानते भी है नहीं भी जानते हैं भागवत को, लेकिन श्रीधरम सकलम वेत्ति, श्रीधर स्वामी सब कुछ जानते हैं। कैसे जानते हैं? नरसिंह प्रसाद। इसलिए व्यासदेव या इसके टीका की रचना करने से पहले श्रीधर स्वामी नरसिंह जी का गुणगान करते हुए कहते हैं प्रहलाद हृदयाल्लाद भक्त्या विद्या विदारणम शरदिंदु रुचिम वंदे पारींद्र वदनम हरिम अनुग्रोप्यनुग्रहेवायं स्वभक्तानां निकेशरी केशरीव सपोतानां अन्येनां उग्रविक्रमः वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नरसिंहमहं भजे। ये श्रीधर स्वामी की कुछ श्लोक है, उनके स्वयं उनके द्वारा रचित श्लोक है भागवत की टीका में, जहाँ वो कहते हैं प्रहलाद हृदयाल्लाद भक्त्या विद्या विदारणम, प्रहलाद के हृदय में जो आनंद प्रदान करने वाले हैं। प्रहलाद हृदयाहल्लाद, हृदय में लादिनी शक्ति को आवेशित करने वाले हैं, लेकिन हलादिनी शक्ति को तभी हमारे हृदय में स्थापना किया जा सकता है जब अविद्या नाश होती है। तो अविद्या विदारणम, अविद्या को नाश करने वाले नरसिंहदेव, जहां जहां कुछ भी चीजों का नाश करना होता है, कहीं भी रक्षा करना होता है, वो केवल नरसिंहदेव की ही करते हैं। इतना हद तक कि भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं वृंदावन में असुरों का वध करना, कृष्ण की लीलाओं को संरक्षण करना, यानी दूसरे शब्दों में कृष्ण रास लीला कर रहे या ग्वाल बालों के साथ अनेकों लीलाएं कर रहे हैं, तो उनकी लीलाओं को रक्षा करने का कार्य भी नरसिंहदेव करते हैं। इसलिए नरसिंहदेव का बड़ा विशेषता है, केवल भक्तों का ही संरक्षण ही नहीं, भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का संरक्षण भी नरसिंहदेव करते हैं। सिंधु रुचिम वंदे पारींद्र वदनम हरिम, शरदिंदु रुचिम वंदे, उनका जो मुखारविंद है अरविंद है, लेकिन मुखारविंद सूर्य जैसा प्रज्वलित हो रहा है, लेकिन उनके चेहरा में उतनी शीतलता भी है, चंद्रमा जैसी शीतलता भी है। पारींद्र वदनम हरिम, और उग्रोप अनुग्रहीवाय, ऐसे देखा जाए बड़े उग्र स्वरूप के हैं, उग्र होने पर भी वो अनुग्रह है। स्वभक्तानाम केसरी, जैसे कोई केसरी व सपोतानाम, कोई एक सिंह रहता है तो सारा अन्य प्राणियों के लिए बड़ा उग्र रहता है, सब लोग उनके नजदीक में जाने के लिए डरते हैं, लेकिन वो सिंह के बच्चे होते हैं वो उसके लिए वो सिंह सिंह नहीं है, वो क्या उनके लिए माँ या पिता हो सकती है। केसरी से पोता नाम अन्य नाम उग्र सबोता नाम निजी भक्तजनों के लिए नरसिंहदेव जो है एकदम बड़े प्रेम से व्यवहार करते हैं और सब लोग बिना डर के उनके पास चले जाते हैं। अन्य नाम बाकी सब लोग जो हैं उग्र विक्रम उनके लिए बहुत उग्र है। बाद में श्री स्वामी कहते हैं वागीशायस्य वदने, वागीशायस्य वदने, वागीशायस्य वदने का अर्थ है वागीश का अर्थ है सरस्वती जी। सरस्वती हमेशा नरसिंहदेव के मुख में रहती हैं। लक्ष्मीर्यस्य वक्षसी, लक्ष्मीर्यस्य वक्षसी, उनके वक्षस्थल में लक्ष्मी निवास करती है। यस्यास्ते हृदये संवित, जिसके वजह से सबके भक्तों के हृदय में संवित शक्ति का आवेशन होता है। तम नरसिंहम अहम भजे, वैसे नरसिंहदेव को मैं भजन करता हूँ करके श्रीधर स्वामी कहते हैं। तो अभी नरसिंहदेव के जो लीलाओं को लीलाओं के अंदर प्रवेश करने से पहले हम उनके जो प्रणाम मंत्र है उसको थोड़ा सा उच्चारण करेंगे, मेरे और उच्चारण करने का प्रयास कीजिएगा। उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युर्मृत्युं नमाम्यहम् श्री नरसिंह जय नरसिंह जया जया नरसिंह प्रहलादेश जया पद्मा मुका पद्मा भृंगम। तो नरसिंह की लीलाएं शुरू होता है जैसे मैंने कहा सातवां संत का पहला अध्याय से। तो सातवां संत का जो पहला अध्याय है ये शुरुआत होता है एक बहुत सुंदर प्रश्न के द्वारा। परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से एक प्रश्न पूछते हैं, हे सुखदेव गोस्वामी मुझे बताइए भगवान जो हैं वो सबके साथ समान व्यवहार करते हैं, सबके लिए प्रिय हैं और सबके मित्र हैं। ये होने पर भी ऐसा लगता है कि समान होने पर भी वो पक्षपात करते हैं, वो सबके लिए प्रिय होने पर भी असुरों के साथ वो वैर रखते हैं और सबका मित्र होने पर भी असुरों को दुश्मन बनाते हैं। मुझे इस बात के ऊपर थोड़ा सा संशय है वो दूर कीजिए। समप्रिय सुहृद् ब्रह्मन् भूतानां भगवान स्वयं इंद्रियस्यार्थे कथं दैत्यं अविदित विषमो यथा। तो इनका प्रश्न ये था कि इंद्रस्यार्थे कथं दैत्यं, इंद्रस्यार्थे इंद्र के लिए, इंद्र को सपोर्ट करने के लिए कथं दैत्यं अविभूत विषमो यथा। भगवान सम का अर्थ है कि सबको समान देते हैं। भगवदीताएं भगवान कहते हैं समोहम सर्वभूतेषु नमे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः। समान होने पर भी हम देखते हैं कि वो पक्षपात करते हैं। हमने देखा कि समुद्र मंथन लीला में भी पक्षपात किया, हर जगह पक्षपात किया, बलि महाराज का उद्धारण में पक्षपात किया, हर जगह पक्षपात किया। प्रिय और उनके लिए सभी लोग प्रिय हैं होने पर भी असुरों से द्वेष दिखाते हैं, युद्ध करते हैं और साथ साथ में सुहृद वो सबका मित्र के रूप में सारे जगत में कहते हैं सुहृदम सर्वभूतानाम। होने पर भी ऐसा लगता है कि ये असुरों का दुश्मन मानते हैं। तो ये प्रश्न जैसे परीक्षित महाराज ने कहा सुखदेव गोस्वामी आगे कहते हैं हे परीक्षित साधु पृष्ठम महाराज हरे चरित्रमद्भुतम यद भागवत महात्म्यम भागवत भक्ति भगवत भक्तिवर्धनम गीयते परमं पुण्यं विश्वित नारदादिभिः नत्वा कृष्णस्य मुने कथयिष्ये हरिकथां। कथयिष्ये हरिकथां, मैं हरि का कथा को वर्णन करता हूँ। कैसे वर्णन करता हूँ? नत्वा कृष्णस्य मुने, नत्वा मैं प्रणाम करके, किसको? कृष्णस्य मुने मतलब व्यासदेव को प्रणाम करता हूँ करके। गीयते परमं पुण्यं ऋषिभिः नारदादिभिः, जो नारद ऋषि इत्यादि महान ऋषियों ने पहले से वर्णन कर चुके हैं, वैसे भगवान की जो महान हरिकथा है, जो गीयते परमं पुण्यं, परम पुण्य को प्रदान करने वाले हैं, वैसे कथा को मैं वर्णन करूँगा। तो इसके वजह से तुम्हारा प्रश्न जो है, साधु पृष्ठम महाभाग महाराजा, हे मारा महाराज, तुमने ये प्रश्न बहुत अद्भुत तरीके से पूछा है, क्योंकि ये प्रश्न की वजह से एक सुंदर कथा को प्रकट होने वाला है। हरे चरित्रम अद्भुतम यत् भगवत महात्म्यम, जो भगवान की महिमा के साथ साथ में भक्त का महिमा को भी वर्णन करने वाली कथा को मैं वर्णन करूंगा। यानी दूसरे शब्दों में परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी पहले से कह दिया है, मैं भगवान की महिमा को वर्णन करूंगी, लेकिन साथ साथ में एक भक्त का जो महिमा है उसका ही वर्णन करूंगा। तो असल में जो दसवां या सातवां जो स्कंद है, ये भागवत का सातवां स्कंद का जो मुख्य विषय वस्तु है वो है उती। उती का है अर्थ है द ड्राइविंग इम्पेटस, उतयः कर्मवासनाः। हम जो भी कार्य करते हैं वो कार्य करने के पीछे जो शक्ति है, प्रेरणा स्रोत है, उसको उती कहा जाता है। तो ये सातवां स्कंद में दो प्रकार की उतियों का वर्णन है। एक है असुरों का जो दुष्कार्य की उती का वर्णन है, जो सारे जगत में अशुभ फैलाता है। जो दूसरा है भगवान की लीलाएं और भक्तों के साथ जो करते हैं लीलाएं, जो सारे जगत में शुभ प्रकाशित करता है। एक है आसुरी उती, दूसरा है दैवी उती। दो प्रकार की उतियों का वर्णन है। और हम देखेंगे इधर सातवां स्कंद के जो पहले 10 अध्याय में शुद्ध भक्ति का वर्णन है, और अन्य अध्यायों में ज्ञान मिश्र भक्ति, कर्म मिश्र भक्ति और भक्ति मिश्र ज्ञान और कर्म मिश्र ज्ञान के इत्यादि वर्णन है। लेकिन हमको अभी 10 अध्याय का विषय में शुद्ध भक्ति का वर्णन है। लेकिन खास करके जो शुद्ध भक्ति जो भगवान के नाम संकीर्तन से उत्पन्न हुआ है, लेकिन साथ साथ में जो अनेकों दिव्य गुणों के आधार में जो किया गया जो नाम संकीर्तन है, वो भक्ति जो है हमको शीघ्र ही फल प्रदान करता है, उसका वर्णन है। जैसे देखा जाए श्रवण कीर्तन, भगवान की नामों का श्रवण कीर्तन बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन कुछ लोगों का भक्ति बहुत जल्दी प्रगति होता है और कुछ लोगों का भक्ति जो है इतनी प्रगति दिखाई नहीं पड़ता है। ऐसा क्यों है? वही कृष्ण कथा है, वही श्रवण की है, वही कथा, वही प्रवचन में बैठे हैं, वही मंदिर में निवास करते हैं, कुछ का प्रगति तीव्र तरीके से हो जाता है, कुछ का प्रगति इतना नहीं होता है। इसका कारण क्या है? कारण है जैसे बारिश जो है बंजर भूमि में गिरता है और जो सार वाला खेत में भी गिरता है। जब बंजर भूमि में बारिश गिरता है, पत्थरों की भूमि में गिरता है, तो उसका फसल नहीं उगता है। लेकिन वही बहुत सार वाला जमीन में बारिश गिरता है तो क्या होगा? तो जल्दी से फसल उगना शुरू होता है। क्यों? क्योंकि जिस हृदय में प्रहलाद जैसे दिव्य गुण हैं, अगर उस गुणों से युक्त अगर कोई भक्ति करता है तो निश्चित रूप में उनके हृदय में भगवत प्रेम जल्दी ही शीघ्र ही प्रकट होता है। जैसे प्रहलाद महाराज 5 साल की उम्र में इतना महान भक्ति को प्राप्त करना, जो ब्रह्मा जी लक्ष्मी जी को भी दुर्लभ है, वैसा भक्ति को प्रहलाद जी ने प्राप्त किया। लक्ष्मी जी भी भयभीत थी नरसिंहदेव के पास जाने के लिए, लेकिन प्रहलाद शांति से जाके नरसिंहदेव की गोद में बैठ गए। तो ये क्यों इतना शीघ्र, इतना छोटा सा बालक हम लोग बोलते हैं जूनियर डिवोटी है, देखा जाए प्रहलाद पुन से 5 साल के आयु के है। तो इतना महान अद्भुत भक्ति कैसे उनके अंदर प्रकट हुआ? वो तो बच्चे के रूप में माँ के गर्भ में थे तब उन्होंने सुना था, कृष्ण कथा को सुना था। लेकिन हम इतना साल सुनते आ रहे हैं लेकिन वो क्यों नहीं हो रहा है? उसका जवाब देते हुए परीक्षित महाराज को सूर्य गोस्वामी कहते हैं ये प्रसंगों के द्वारा कि आखिरी अध्याय में प्रहलाद के गुणावली को वर्णन करते हैं, उनके अंदर कितनी नम्रता है, सहनशीलता है, मित्र की भावना है। तो इन दैवी गुणों के हृदय में, ये दैवी गुणों के से संपन्न हृदय में जब कृष्ण कथा का श्रवण होता है, वही कृष्ण कथा का श्रवण प्रेम को जल्दी से प्रकाशित कर सकता है। लेकिन वही कृष्ण कथा का श्रवण वही व्यक्ति का जो और कोई व्यक्ति करता है जिसके अंदर दैवी गुण नहीं है, तो उनके लिए बहुत थोड़ा लंबा समय हो सकता है। इसलिए प्रहलाद की महिमा इतना ही नहीं, उन्होंने नारद जी के मुख से उन्होंने श्रवण कीर्तन श्रवण किया और अपने असुरों की जो मित्र थे उनको कीर्तन किया, बल्कि उनके हृदय के साथ सारे दिव्य गुणों से विभूषित था। तो ये प्रहलाद का चरित्र है। और दूसरी ओर देखा जाए, हम देखते हैं कि हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष विष्णु से इतना द्वेष कैसे किए? इतना द्वेष इसलिए किए, भले ही वो पार्षद थे भगवान के, लेकिन उनका क्या था? क्रोध था। किसके प्रति क्रोध था? इन दोनों के प्रति क्रोध था, चार कुमारों के प्रति क्रोध था। ये चार कुमारों के प्रति पूर्व का क्रोध अभी कैसे प्रकट हुआ? भगवान के प्रति क्रोध या द्वेष के रूप में प्रकट हुआ। तो इससे पता लगता है अगर कोई भक्तों से क्रोध करता है, आज नहीं तो कल या अगले जन्म में या अगले जन्मांतर के बाद वो भगवान के प्रति क्रोध के रूप में वो प्रकट हो जाएगा। इसलिए वैष्णव अपराध से बहुत बच के रहना चाहिए। तो अगर कोई व्यक्ति भक्तों से क्रोध करता है तो वही क्रोध जो है वो भगवान की ओर द्वेष के रूप में परिणित होता है। तो ये जय विजयों के प्रति या जय विजयों का वो पूर्व में जो क्रोध था ये चार कुमारों के प्रति, वही क्रोध अभी भगवान के ऊपर प्रकाशित हुआ। दूसरी ओर असुर के परिवार में जन्म लेने पर भी प्रहलाद ने नारद जी का संगति किया, उसकी वजह से उनको क्या प्राप्त हुआ? भगवान के प्रति इतना विशुद्ध प्रेम प्राप्त हुआ। तो जैसे परीक्षित महाराज ने इस प्रकार का प्रश्न पूछा तो सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि मैं भी आपको हरिकथा सुनाता हूँ। तो हरिकथा को सुनाने से पहले एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत को उच्च वर्णन करते हैं परीक्षित महाराज। परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, हे सुखदेव गोस्वामी तुम सुनो, ये जो दिखाई पड़ रहा है, कभी लगता है कि देवता लोग शक्तिशाली हो गए, कभी लगता है कि ये जो असुर लोग शक्तिशाली हो गए, ये सब के साथ भगवान का कुछ लेना देना नहीं है। ये सब प्रकृति का खेल है। गुणोपि अजो अव्यक्तो भगवान प्रकृते परहा सुमाया गुणान अविशत भद्दया भक्तानां गतः। तो भगवान को प्रकृति परहा, प्रकृति के परे होने के नाते उनको ये सब चीजों के साथ कुछ लेना देना नहीं है। सत्वम रजस्तमिति प्रकृते नात्मनो गुण ही न तासाम यद युगपद राजन हर्ष उल्लास एववा। हर्षोल्लास एववा, कभी कोई खुश हो जाता है, कभी कोई दुखी हो जाता है। ये सब चीजें जो है वो सत्व रजस तम ये तीनों गुणों का खेल है। जब जय कालेश सत्वस्य देवर्षिम राजसोसुरान तमसो यक्ष राक्षसा तत्कालात्मो मुझे। तो कभी सत्व गुण का विकास होता है तो देवता लोग शक्तिशाली हो जाते हैं। जब रजगुण का विकास होता है तब असुरी लोग जो है वो शक्तिशाली हो जाते हैं। और जब तमोगुण का विकास होता है इस संसार में तो यक्ष राक्षस जो लोग हैं वो उस शक्तिशाली हो जाते हैं। तो इसमें कुछ भगवान को कुछ लेना देना नहीं है। सब कोई प्रश्न उठा सकता है, तो या क्या भगवान जो है क्या तीनों गुणों को नियंत्रण नहीं करते, ये तीनों गुण अपने आप से कार्य करते? नहीं, भगवान ये तीनों गुणों को नियंत्रण करते हैं। हाँ, ये तीनों गुणों को भगवान के नियंत्रण के अनुसार ऊपर नीचे होता रहता है। तो भगवान का नियंत्रण है और साथ साथ में भी उनको इन सब से कुछ देना देना नहीं है। तो कोई कह सकता है भगवान जो है ये तीनों गुणों का नियंत्रण कालानुसार करते हैं, तो इसलिए काल के अंतर्गत बद्ध है भगवान। तो इस सिद्धांत को भी काटते हुए, ये गलत सिद्धांत को काटते हुए आगे सुखदेव गोस्वामी कहते परीक्षित महाराज को, नहीं, भगवान कालानुसार भले ही किन गुणों को नियंत्रण करते हैं, भगवान काल से परे हैं। काल जो है भगवान की शक्ति है। तो ये जो भगवान की शक्ति, काल शक्ति जो है, वो काल शक्ति के अनुसार कभी सत्वगुण, कभी रजोगुण, कभी तमोगुण ऊपर नीचे होता रहता है, और इसमें कोई भगवान का कुछ लेना देना नहीं है। तब सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को कहते हैं, तुम्हारा प्रश्न का जवाब देते हुए मैं एक इतिहास में घटी हुई घटना को वर्णन करूंगा, जो वर्णन युधिष्ठिर महाराज को नारद जी ने कहा था, क्योंकि उन्होंने पहले कहा था नारदादि भी, नारद जी जिस प्रकार वर्णन किए ऐसे ऋषियों के हिसाब से मैं वर्णन करूंगा। तो नारद युधिष्ठिर संवाद को शुरू करते हैं। जो नारद युधिष्ठिर संवाद में हम देखते हैं कि उन्होंने नारद जी पहुंचे थे कहां, राजसूय सभा में, युधिष्ठिर की राजसूय सभा में। अभी शिशुपाल का वध हो गया था, तो शिशुपाल का जब वध हुआ तो सभी लोगों ने देखा, युधिष्ठिर महाराज ने भी देखा, क्या हुआ, शिशुपाल की जो आत्मा है वो भगवान के अंदर प्रवेश कर दिया। तब उस सभा में युधिष्ठिर महाराज ने नारद जी से उन्होंने प्रश्न पूछा। प्रश्न ये था कि अगर कोई भगवान की निंदा करता है तो निश्चित रूप में ऐसा है कि वो व्यक्ति का आयु क्षीण हो जाता है, उसका जो शरीर है वो क्षीण हो जाता है, और उसकी जिह्वा जो है वो कुष्ठ रोग से वो हो जाता है। लेकिन आश्चर्य की बात ये है कि जो शिशुपाल जो है, जन्म से ही, जब से जैसे बच्चा बोलना शुरू करता है तब से भगवान का निंदा करना शुरू किए, और उनको भगवान की निंदा के अलावा और कुछ मालूम ही नहीं था शिशुपाल को, ऐसा उनका द्वेष था कृष्ण के प्रति। और होने पर भी ऐसा लग रहा है कि उनका एकदम हट्टा कट्टा शरीर है, ऐसा क्यों? और दूसरा आश्चर्य की बात यह है, जब शिशुपाल को मार दिया भगवान ने, शिशुपाल को मुक्ति प्राप्त हो गया, जो बड़े बड़े योगियों को भी प्राप्त नहीं है ऐसा मुक्ति प्राप्त हो गया। ये दो आश्चर्यजनक बात है। तब उसका जवाब मैं संक्षिप्त में कह रहा हूं, क्योंकि थोड़ा लंबा छोटा है। तब पर नारद मुनि कहते हैं शिशुपाल को, युधिष्ठिर महाराज को, युधिष्ठिर अभी ये आश्चर्य लगता है, लेकिन सुनो शिशुपाल के विषय में, जब से उनका जन्म हुआ तब से कृष्ण का उन्होंने निंदा किया, तो निंदा करने की वजह से निश्चित रूप में उनको अपराध हुआ, उनको दोष लगा, उनको पाप लगा। लेकिन साथ साथ में उनकी जब निंदा कर रहा था कृष्ण का, उनका पूरा मन और चेतना उनका पूरा कृष्ण में लगा हुआ था, वो कृष्ण के अलावा और किसी के बारे में सोच ही नहीं रहा था। तो भगवान की निंदा, किसी की भी निंदा, वो दो तरीके से होता है, एक तो वैसे निंदा करना बहिरंगिक रूप में, दूसरा पूरा चित्त से पूरा मन लगा के निंदा करना। शिशुपाल ने क्या किया था, पूरा मन लगा के निंदा किया था कृष्ण का, इसके वजह से उनको नरक प्राप्ति नहीं हुआ बल्कि मुक्ति प्राप्त किया। क्योंकि भगवान के गुणों में या उनके उनके रूप में पूरा चित्त को लगाना, वो जो उससे उत्पन्न हुआ जो सुकृति है, उनसे उत्पन्न हुआ जो भक्ति है, जो शक्ति है, वो क्या हुआ, शिशुपाल का जो निंदा करने की वजह से जो जो दुष्कर्म हुआ वो उसको दबा दिया, उसको न्यूट्रलाइज कर दिया। दूसरी ओर वेण था, ये भी राजा था, वो भी कृष्ण को निंदा किया। जब उन्होंने कृष्ण को निंदा किया तो क्या हुआ, तो उन्होंने वैसे निंदा किया था, उनका मन कृष्ण में नहीं लगा था, इसकी वजह से खाली निंदा करने की वजह से उनको नरक प्राप्ति हुआ। यानी अब देखिए तो नारद जी कहते हैं अगर कृष्ण की इस प्रकार की शिशुपाल जैसा भक्ति में भी किसी ना किसी तरीके से कृष्ण में मन लगाने से मुक्ति प्राप्त हो सकता है तो अन्य लोगों क्या कहना, जैसे गोपियां हैं और अन्य जो यशोदा नंद महाराज और जो है उन लोगों की क्या कहना। और बाद में एक जगह ये कहते हैं कि जिस तरीके से द्वेष से जिसका मन जितना आसानी से किसी में लग सकता है वो किसी और विधि के द्वारा नहीं लग सकता। तो इसका व्याख्या में कहा गया है कि शिशुपाल जितना वो कृष्ण के बारे में सोच रहा था उतना बड़े बड़े साधक लोग भी नहीं सोच पाते थे कृष्ण के बारे में। तो इसका अर्थ यह है कि शिशुपाल ने महान कार्य की, शिशुपाल की गुणगान हो रही है लेकिन भक्ति का गुणगान हो रहा है। कृष्ण के बारे में 24 घंटा स्मरण करने की जो शक्ति है उसकी गुणगान है। तो ये इसके विषय में युधिष्ठिर महाराज को नारद मुनि प्रसंग को वर्णन करते हैं, किनका, चार कुमार और जय विजय का संक्षिप्त में। तो संक्षिप्त में उन्होंने कहा कि ये दोनों जय विजय और चार कुमार इन दोनों के बीच में जो हुआ, चार कुमार जो प्रवेश करने वाले थे और उस समय जय विजय ने रोका तब भगवान ने उनको शाप दिया, या भगवान ने उनको या चार कुमार ने शाप दिया। तो भगवान की अनुमति थी, ठीक है जय विजय आप जाइए, तीन जन्म आप मेरे शत्रु के रूप में रहिए। तो तीन जन्म क्या था उनका, उनका था हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु, शिशुपाल दंतवक्र और रावण कुंभकर्ण, रावण कुंभकर्ण शिशुपाल दंतवक्र। तो इसके वजह से उनका प्रकट हुआ और तुरंत ये जो हिरण्याक्ष का वध हुआ, भगवान ने जैसे हिरण्याक्ष से वध किया तो तुरंत हिरण्यकश्यप को बहुत क्रोध आया। तो इससे दूसरा अध्याय शुरू होता है, यानी भागवतम का जो सातवां स्कंध का दूसरा अध्याय में वर्णन किया जा रहा है कि किस प्रकार हिरण्याक्ष का वध होने के बाद हिरण्यकश्यप ने किस प्रकार व्यवहार किया। हिरण्यकश्यप तो तुरंत उन्होंने सारे अपने असुरी लोगों को वर्णन करना आदेश दिया, आप जाओ जहां जहां अच्छा कार्य हो रहा है उधर जाओ, सबको नाश करो, ब्राह्मणों को नाश करो, जहां जहां गो सेवा हो रहा है उन सबको नाश करो, जहां वर्णाश्रम धर्म का पालन हो रहा है उन सबको जाके नाश करो, और सारे वृक्षों को आप नाश करो। प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में लिखते हैं ये असुरी स्वभाव है। तो असुर व्यक्ति क्या करता है, हमेशा उनके मन में यही रहता है कि मैं किस प्रकार भगवान या आपके द्वारा किया प्रस्तुत जो प्रकृति है उसको मैं नाश करूं। तो उन्होंने सोचा कि जब भगवान को संतुष्ट करने वाले सारे यज्ञ विधि सब समाप्त हो जाएंगे तो अपने आप ये देवता लोग मर जाएंगे और मेरे सारे सा जितने भी लोग हैं उनके ऊपर राजत्व करूंगा। और हिरण्यकश्यप ने कहा Does the demons being found of disastrous things? उनको तो अच्छा लग रहा था, वो सब लोग गए अलग अलग जगह। अब हिरण्यकश्यप ने क्या किया, वो सीधा ओ किंग हिरण्यकश्यप वॉज एक्सट्रीमली एंग्री बट सिंस ही वॉज अ ग्रेट पॉलिटिशियन ही नो हाउ टू एक्ट अकॉर्डिंग टू टाइम प्लेस एंड सरकमस्टेंसेस हिज स्पीच कोड्स ही बिगन टू पैसिफाई द प्रिंसिपल पैसिफाई हिज नेव्यू। हिरण्याक्ष के वध होने के बाद उनकी जो माता है उनकी और उनकी पत्नी है वो सब बहुत दुखी हो गए, उनके बच्चे सब दुखी थे तो सबके पास गया। वृषभानु थी उनकी हिरण्याक्ष की पत्नी का नाम, उनके पास गई, उनकी माँ दिति भी रो रही थी, उन सबके पास जाके हिरण्याक्ष इस प्रकार बोलना शुरू किया। तो हिरण्यकश्यप इस प्रकार बोलना शुरू किया तो हिरण्यकशिपु देखा जाए तो उन्होंने बड़े बड़े ज्ञान की बातों वर्णन करना शुरू किया। उन्होंने बताया कि देखो आप इन सब चीजों के लिए रो मत, आप अगर रोगे तो कोई फायदा नहीं होगा, अभी कालांतर्गत जो आत्मा जो है वो शाश्वत है। ऐसा नहीं कि इधर हिरण्याक्ष मर गया, हिरण्याक्ष मरा नहीं है, शायद उनका शरीर मात्र मरा है, आप उनका चिंता मत करो। शरीर और आत्मा का ज्ञान देना शुरू किया, जो ज्ञान भगवान ने अर्जुन को दिया था भगवद गीता में, वही ज्ञान इधर कौन दे रहा है, हिरण्यकशिपु और उनकी हिरण्याक्ष की पत्नी को और उनके बच्चों को और माता दीदी को सबको प्रवचन दे रहा है, आत्मा और अनात्मा का ज्ञान दे रहा है। और उसमें भी उन्होंने एक पक्षी का उदाहरण दिया और यमराज का उदाहरण दिया। यमराज आए थे एक प्रसंग में, एक जगह एक राजा सुयज्ञ करके था, वो रो रहा था, उनकी पत्नियां रो रही थी, ये यमराज आए, यमराज आके उनको समझाए बालक के रूप में आके, तो ये सब बड़ा बड़ा प्रवचन दिया हिरण्यकश्यपु ने। जैसे प्रवचन दिया, प्रवचन देने के बाद भी उनकी सांत्वना नहीं हुई, लेकिन उन्हें कहा, ओ वुमन आई एम फॉर्चुनेट बिकॉज ऑल दो अबंडेंट बाई माई मदर एंड फादर आई हैव नॉट बीन ईटन बाई वुल, दस आई डू नॉट वरी, ही हु प्रोटेक्ट मी इज द ओम प्रोटेक्टर नाउ। तो हिरण्याक्ष जो है, हिरण्यकश्यपु जो है, ये बड़ा बड़ा प्रवचन देना उधर शुरू किया। और जैसे प्रवचन देके उन्होंने सोचा, अभी मुझे पूरा ब्रह्मांड के ऊपर राजत्व करना है और मुझे ऐसा शक्ति प्राप्त करना है ताकि मैं मृत्यु को मारूं। अभी इधर प्रश्न उत्पन्न होता है, अभी हिरण्यकश्यपु उन्होंने अभी आत्मा और अनात्मा, आत्म तत्व और अनात्म तत्व के ऊपर, शरीर और आत्मा के विषय में बहुत बड़ा प्रवचन दिया। प्रवचन देने के बाद अभी क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है, मैं विष्णु को मारूंगा। तो ये जो ज्ञान है ये असुरी ज्ञान माना जाता है। भले ही आत्मा का ज्ञान है, लेकिन इस आत्मा का ज्ञान के वजह से भगवान की भक्ति प्राप्त नहीं होती है, वो ज्ञान जो है असुरी ज्ञान माना जाता है। नारद जी इस विषय में कहते हैं, ज्ञानमलम निरंजनम, भले ही वो निरंजन ज्ञान भी क्यों ना हो, लेकिन अच्युत भाव वर्जितम न शोभते ज्ञानम निरंजनम। अच्युत भाव वर्जितम, भगवान अच्युत के प्रति अगर भावना को जागृत करने वाला ज्ञान नहीं है, भले ही वो आध्यात्मिक ज्ञान क्यों ना हो, वो भी कोई काम का नहीं है। अभी आजकल जो भौतिक ज्ञान जो लोगों को सिखाया जाता है, तो उसकी क्या कहना, हिरण्यकशिपु का आध्यात्मिक ज्ञान भी अगर बेकार है, तो आजकल का असुरों का जो भौतिक ज्ञान उसको का वो कौन सी काम का है। तो आजकल लोग बोलते हैं हम कर्म कर रहे हैं, लेकिन वो कर्म की क्या फायदा अगर वो कर्म भगवान को अर्पण नहीं किया जाता। तो एनी हाउ इस प्रकार हिरण्यकशिपु ने सोचा कि मैं जाऊंगा, मैं जाके अभी तपस्या करने लग जाऊंगा। तपस्या करने जैसे हिरण्यकशिपु गए, तो क्या हुआ, नारद जी ने सोचा एकदम बिल्कुल अभी, सॉरी इंद्र ने सोचा अभी बिल्कुल अभी समय है, हम सब जाएंगे और क्या करेंगे, जो हिरण्यकश्यपु पत्नी है कयादु उनको बंदी बना लेंगे, क्योंकि हिरण्यकश्यपु की जो पत्नी है कयादु उस समय गर्भवती थी, तो गर्भवती होने के नाते तो सब लोग, ये देवतालों ने प्लान बनाया, अरे बड़ा हिरण्यकश्यपु तपस्या कर रहा है और उसका तपस्या से बड़ा भयानक स्थिति हो रही है, और अभी उसका एक छोटा हिरण्यकश्यपु अभी घर में है और वो भी बाहर आ गया तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए हम क्या करेंगे, उनको तुरंत उनको पकड़ लेंगे। चलिए, तो हिरण्यकश्यपु जैसे पहुंचे, नारद मुनि इंद्र अपने सारे लोगों को लेके हिरण्यकश्यपु महल में पहुंचा। तो हिरण्यकश्यपु का इस प्रकार की इच्छाएं थी, पहली इच्छाएं थी कि उन सोचा कि मैं ऐसा योग तपस्या करूंगा ताकि मैं कभी मरू ना, मैं सारे जितने भी देवता लोग हैं उनको अपने नियंत्रण में रखूंगा, कहीं मरू ना। तो हिरण्यकश्यप की तपस्या का वर्णन है कि किस प्रकार उन्होंने एक पैर पे खड़े होके दोनों बाहों को ऊपर उठा के, आज तक ऐसी तपस्या कोई किया नहीं था, इतनी कड़ी तपस्या, ऐसा तपस्या करना शुरू किया। उनके शरीर से ऐसा आग प्रकट होने लगा कि सारे ब्रह्मांड में सभी लोग एकदम भयभीत हो गए, सबको आग जलने लगा। सब लोग ब्रह्मा जी के पास गए, तो ब्रह्मा जी के पास जैसे पहुंचे, ब्रह्मा जी जो है वो हिरण्यकश्यप के पास पहुंचे। तो ब्रह्मा जी जब आए, हिरण्यकश्यप कहाँ है उनको दिखाई नहीं पड़ रहा था। हिरण्यकश्यप इतने सालों तक तपस्या किए, उनके पूरा शरीर भर मट्टी जम गया था, ये जो सांप का जो बिल होता है वो जम गया था, एंड हिल्स जम गए थे, जो चीटियों का घर बन गया था, उनका पूरा शरीर स्थिर हो गया था, सब प्राण केवल हड्डियों में रह गया था। तो वैसा स्थिति में हिरण्यकश्यप होता था, ब्रह्मा जी पहुंचे। तो ब्रह्मा जी जैसे पहुंचे, ब्रह्मा जी कहे, उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भद्रम ते तपस्सिद्धो कश्यप, तपस्सिद्धो भी कश्यप, हे कश्यप के पुत्र आपकी तपस्या सिद्ध हो गई। सिद्धि का अर्थ क्या है, आप जिनके तपस्या करो वो सामने प्रकट हुआ है, उठो वरदो हम अनुप्राप्त हो, आपको जो चाहिए वरदान देने के लिए मैं तैयार हूँ। वीरताम तुष्टो वरहा, तो मैं आपकी जो तपस्या से संतुष्ट हो गया हूँ, आपको जो चाहिए वो मांगो, मैं देने के लिए तैयार हूँ। मैंने देखा है कि तुम्हारी जो तपस्या बहुत कड़ी तपस्या है, भले ही तुम्हारे शरीर पूरा साग सारे कीड़े मुंडे मकोड़े खा गए, लेकिन फिर भी तुम तपस्या कर रहे हो, तुमको देख के बड़ा मुझे हो रही है। बड़े बड़े जो देवता भृगु ये ब्राह्मण है वो भी नहीं कर सकते, हमने एक बूंद पानी पिए बिना कितने 100 देवताओं की वर्ष तक आपने तपस्या किया, मैं बहुत प्रसन्न हूं तुमसे, तुमको क्या चाहिए पूछो, जो वरदान चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूं। तब इस प्रकार जैसे ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मा जी इस प्रकार जैसे कहते हैं, एंडोन विद सेंस ऑफ माइंड एंड सेंसेस, ब्रह्मा जी ने क्या किया, उनकी कमंडलों से थोड़ा सा जल छिड़का तो हिरण्यकश्यप एकदम वापस जवान हो गया, वापस एकदम हट्टा कट्टा हो गया है, राजा का रूप, उनका शरीर जो है चमकने लगा। तो इस स्थिति में हिरण्यकश्यप प्रणाम किए ब्रह्मा जी को, प्रमाण करके वो खड़े हो गए। खड़े होके हिरण्यकश्यप पूछते हैं, ब्रह्मा जी को स्तुति करते हैं, हे ब्रह्मा जी आप एकदम महान हो, आपसे बढ़कर कोई चीज नहीं है, कि असुरों का ही स्वभाव रहता है, जिनको जिनसे उनकी आशा पूर्ण होता है उन्हीं को भगवान बना देते हैं, आप ही आत्मा की आत्मा हो, जैसे भगवान की स्तुति होता है वैसे सारी स्तुति हम ब्रह्मा जी को करने लगे। करते करते उन्हें अंत में उन्होंने पूछा, अंत में उन्होंने कहा, मैं आपको प्रणाम करता हूं जो सारे चर और अचर के प्राणियों के सृष्टि करता हो। तब उन्होंने इस प्रकार के प्रश्न या वरदान मांगे, आप सारे वरदान देने में समर्थ हो, अगर आप मेरे से प्रसन्न हो तो मुझे ये वरदान दीजिए, मैं सबसे पहला आपके द्वारा सृष्टि किए गए जीवों के द्वारा मुझे मृत्यु नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप सबका सृष्टि करता हो, तो मेरा सबसे पहला वरदान ये चाहिए कि आपके द्वारा सृष्टि किया गया कोई भी जीव मुझे मारना नहीं चाहिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। बाद में उन्होंने सोचा, हो सकता है कि मेरा मृत्यु जो है कोई घर में हो सकता है, किसी घर में, तो ने कहा कि नहीं, ना घर के अंदर होना चाहिए ना मेरा मृत्यु घर के बाहर होना चाहिए। तो बाद में सोचा, हो सकता है दिन और रात ही तो है, ना मेरा मृत्यु जो है दिन में नहीं होना चाहिए और रात को भी नहीं होना चाहिए। बाद में सोचा कि हो सकता है कोई विष्णु जो है, हो सकता है उनके पास चक्र, वो चक्र आके मुझे मार सकता है, मुझे कोई भी आयुधि अस्त्र के द्वारा मेरा मृत्यु नहीं होना चाहिए। तब उन्होंने सोचा ये विष्णु बड़ा चतुर है, वो कहीं भी कुछ भी हो सकता है, वो मुझे आकाश में लेके मार सकते हैं। तो उन्होंने सोचा कि नहीं, मुझे मेरा मृत्यु ना आकाश में होना चाहिए ना मृत्यु ना पृथ्वी में होना चाहिए। बाद में उन्होंने कहा मेरा मृत्यु जो है ना मृत चीज से होना चाहिए ना जीवित चीज से होना चाहिए, ना देवताओं के द्वारा ना असुरों के द्वारा ना किसी और के द्वारा नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार उन्होंने जैसे वरदान मांगे तो ब्रह्मा जी ने क्या कहा, तथास्तु, वेरी गुड, नो प्रॉब्लम, व्हाट एवर यू वांट आई विल गेट, जो जो आपको जो जो जैसे जैसे आपकी जो इच्छाएं हैं वो सारी इच्छाएं आपकी पूर्ण हो जाएगी। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने वरदान प्रदान किया। जैसे ब्रह्मा जी ने वरदान प्रदान किया तो सबको डर लगने लगा, अभी हिरण्यकशिपु जो है इतना शक्तिशाली हो गया, अभी क्या होगा सारा जगत का, खास करके इंद्र अभी पहुंच रहा है हिरण्यकशिपु के महल में पहुंच रहा है, तो उन सबको डर लगने लगा। तब नारद सेड, जस्ट रिस्पेक्ट रिक्वेस्टेड ब्रह्मा प्लीज हिरण्यकशिपु से ग्रांटेड ऑल विशेस विच आर वेरी डिफिकल्ट टू ग्रांट, जो बहुत मुश्किल था वैसे वैसे जो जो वरदान ब्रह्मा जी ने प्रदान कर दिया। ओ डियर हिरण्यकशिपु, ऑल दो दीज बेनेडिक्शंस योर रिक्वेस्ट वेरी डिफिकल्ट, आई शिल ग्रांट यू, चिंता मत करो, ऐसी ऐसी जो वरदान है जो बहुत बड़े लोगों को भी प्राप्त नहीं होता है, लेकिन मैं तुमसे बड़ा प्रसन्न हूं, जो चाहे वो ले लो। तब जैसे ब्रह्मा जी के द्वारा इस प्रकार उन्होंने वरदान प्राप्त किया तो तुरंत तो हिरण्यकशिपु ने क्या किया उसका वर्णन है। हिरण्यकशिपु पोजिशनिंग ऑल द वेल्थ बिगेन डिसाइडिंग इन हेवनली प्लैनेट, और सीधा पहुंचा हेवनली प्लैनेट स्वर्ग लोक में पहुंच के उधर, जैसे पहुंचे युद्ध युद्ध कुछ नहीं, इंद्र तो पहले से उधर भाग गया था उधर से, और विश्वकर्मा के द्वारा जो सृष्टि किया गया जितने भी सुंदर बगीचे थे वो सबको रमण करने लगा। ऐसा वर्णन किया गया है कि इधर द वॉल्स ऑफ सेलेस्टियन द लाइंस ऑफ द कॉलम्स आर मेड ऑफ कैट आई जेम, सुंदर सुंदर अनेकों अनेकों जो इंद्र के महल में हर चीजें उन सबको भोगना शुरू किया। बींग द अबोर्ड ऑफ ऑस्टेरिटी फिजिकल योगा फिजिकल एंड सेंशुअल स्ट्रेंथ इंटॉक्सिकेटेड स्ट्रेंथ ऑफ स्पेलिंग लिकर विद रोलिंग आईज हिरण्यकशिपु वाज वर्शिप बाय ऑफरिंग, सब लोग हिरण्यकशिपु को पूजा करने लगे। खाली विष्णु और शिव, ब्रह्मा विष्णु शिव, ये तीन लोगों को छोड़ के सब लोग हिरण्यकशिपु को ये स्तुति करने लगे, आदर देने लगे। आगे द प्लैनेट अर्थ विच वॉज कंसिस्टिंग ऑफ सेवन आइलैंड डिलीवर्ड फूड ग्रेन्स विदाउट बीइंग प्लाउड, इतना भयभीत सब लोग, भयभीत थे सब लोग, ये जो पृथ्वी को खेत में खेती किए बिना ही पृथ्वी जो है वो सब कुछ बताने लगी, और जितने भी गायें थी वो सब अपने आप दूधने लगी हिरण्यकशिपु के भय से, यानी प्रकृति का जो नियम कानून है वो पूरा वो चेंज हो रहा था। द ओशन ऑफ सॉल्ट वाटर वाइन घी शुगर कैन जूस जुगर्ट मिल्क एंड स्वीट वाटर एंड रिवर्स वेल डिलीवर्ड क्वांटिटीज ऑफ ज्वेल्स ऑन देयर वेव्स, हिरण्यकशिपु भय से सब अपने अपने जो बड़े बड़े सुंदर रत्न वो सब देने लगे, और पूरा प्रकृति के नियम चेंज हो गया था, और हिरण्यकशिपु ने एक ऐसा एक लॉ बना दिया था, जो पाप करता है वो स्वर्ग में जाएगा, जो पुण्य करता है वो नरक में जाएगा। हिरण्यकशिपु का लॉ कुछ अलग, एवरीवन इंक्लूडिंग द रूलर्स ऑफ वेरियस प्लैनेट्स बिकमिंग डिस्ट्रेस्ड बाय सीवियर पनिशमेंट एंड विदाउट शेल्टर एनीवेयर अप्रोच द सुप्रीम लॉर्ड, तो सब लोग क्या किए भगवान के पास गए, क्योंकि सब लोग बहुत दुखी थे तो क्या करेंगे। Then a voice without form, like rumbling the clouds, sounded in all directions. एक ऐसा एक आवाज आया बादलों के बीच में से, सारे देवताओं को वो आवाज सुनाया कि डू नॉट फियर, घबराओ मत. आई विश ऑल गुड फॉर्चून टू यू, आप सब लोगों के लिए मैं शुभ चाहता हूँ. सीइंग मी विल गिव द हाईएस्ट बेनिफिट टू ऑल बीइंग्स, आई शुड स्टॉप द ईविल. मैं अभी सारे जितने भी हिरण्यकश्यप का अच्छा सारे मैं रोकूंगा. कब आऊंगा? मैं जल्दी से जल्दी आऊंगा. तो समय की बात है कि पर्सन हेट्रेड टू द वेदर्स, जो देवताओं वेदों के प्रति और भक्तों के प्रति जो द्वेष दिखाता है, ब्राह्मणों को नुकसान पहुंचाता है, धर्म को क्या ख्याति करता है, तो वो निश्चित रूप से उनका नाश जल्दी हो जाएगा. तब नारद जी बाद में उन्होंने कहा, वो आकाशवाणी से सुनाई पड़ा कि जब यह हिरण्यकश्यप अपना ही पुत्र प्रह्लाद को जब मारने पे आता है, उस समय भले ही ब्रह्मा जी ने कितने भी प्रकार के वरदान दिए भी क्यों ना दिए होंगे, तो वरदान कोई काम का नहीं रहेगा, मैं उनको वध करूंगा. तो नारद जी एड्रेस इन दिस वे एज अ गुरु ऑफ द वर्ल्ड, देवता सब लोग जो है वो देवता लोग निकल गए, उन सबको बहुत शांति का अनुभव हुआ. तो इस प्रकार नारद जी युधिष्ठिर महाराज को आगे कहने लगे. युधिष्ठिर महाराज जैसे नारद जी के इन सब बातों को सुना, तो उन्होंने पूछा, ओ किंग, प्रहलाद गुड क्वालिटीज आर ग्लोरिफाइड बाय द वाइज. अभी प्रहलाद के विषय में प्रहलाद का चरित्र शुरू करते नारद जी. नारद जी स्वयं अत्यंत में ये लीला इसलिए सुनाए क्योंकि प्रहलाद गांव ने नारद जी के शिष्य है, तो शिष्य होने के नाते अपने ही शिष्य का गुणगान कर रहे हैं. इतना अद्भुत गुणों से संपन्न है प्रहलाद. जस्ट एज ऑल द गुड क्वालिटीज ऑलवेज फाउंड इन सुप्रीम लॉर्ड, जिस प्रकार सारे जितने भी दिव्य गुण भगवान में प्राप्त होते हैं, वैसे ही सारे दिव्य गुण जो हैं ना प्रहलाद में प्राप्त है. ओ किंग, इन डिवोटीज डिस्कोर्स द एनिमीज ऑफ द डेवन्स नेम इज द देवतास, व्हाट टू स्पीक अ पर्सन लाइक यू, वुड साइट प्रहलाद एज एन एग्जाम्पल ऑफ अ ग्रेट डिवोटी. तो खाली इतना ही नहीं, कहीं भी कोई प्रसंग होता है, भगवान का प्रसंग होता है, भक्तों का प्रसंग होता है, भक्तों के गुणों का वर्णन होता है, वो उस समय निश्चित रूप में प्रहलाद के बारे में वर्णन किया जाता है. हु कैन दिस इन्यूबल क्वालिटीज ऑफ प्रहलाद, कौन कह सकता है प्रहलाद के दिव्य गुणों के विषय में. इट इज एक्यूरेटली सेट दैट दिस ग्रेटनेस वॉज इज नेचुरल अट्रैक्शन टू वास्तविक. अनेकों गुणों में से तो वास्तविक उनका प्रहलाद का जो गुण है क्या है, वासुदेव भगवती यस्यास्ते नैष्ठिकी रति, जो भगवान वासुदेव के प्रति जो नैष्ठिकी रति है यही उनका महान गुण है. अनेक गुणों के साथ ये जो सबसे महत्वपूर्ण गुण है. प्रहलाद जो एक छोटा सा बालक था और वो कोई खेल कूद में कोई उनका कोई रुचि नहीं था, क्योंकि उनका मन जो है पूर्ण तरीके से कृष्ण में आकृष्ट था. ऐसा लगता था कि अरे ये तो ऐसे बैठा हुआ है, कोई मनहूस चेहरे से बैठा हुआ है, और ऐसा लग रहा था कि लोगों को कि ये प्रहलाद जो है ये भौतिक जीवन के बारे में कुछ जानता नहीं है, मूर्ख है. लेकिन हमेशा कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करने की वजह से हमेशा वो जब खाते थे, पीते थे, सोते थे, हर कार्य में केवल कृष्ण का ही स्मरण करते थे. When his mind became troubled because of the absence of the Lord, he would cry. कभी कभी कृष्ण का विस्मृति की वजह से विरह में वो कभी भी रोते थे. And he would laugh and sometimes again joyful thinking of the Lord. इस प्रकार दिव्य आनंद में हमेशा उनका जीवन यापन करते थे प्रहलाद जी. Sometimes in great long he would cry out and would dance without shame. कभी कभी दिव्य उन्माद में वो कभी नृत्य करते थे, वो कभी रोते थे. Lost in the thoughts of the Lord, identifying with the Lord, he would imitate the pastimes of the Lord. कभी कभी कृष्ण के स्मरण में वो कृष्ण लीलाओं को वो ये करते थे, कृष्ण लीलाओं को एनेक्ट करते थे. Sometimes his would be hair would stand on the body. प्रहलाद के जो रोम को खड़े हो जाते थे दिव्य आनंद में. Expressing his great affection for the Lord, he half closed eyes with tears in his आंखों को आधा बंद करके उनकी आंखों में आंसू प्रवाहित होते थे. ये नारद जी अपने शिष्य प्रहलाद के गुणों का विषय में वर्णन कर रहे हैं. तब युधिष्ठिर महाराज पूछते हैं, तो ओ बेस्ट द ग्रेट देवता नारद जी, आई विश टू नो वाई हिरण्यकशिपु ये सफरिंग प्रहलाद. मैं ये जानना चाहता हूं कि हिरण्यकशिपु जो है प्रहलाद जी को इतना दुख क्यों प्रदान किया. इतना शुद्ध भक्त, उनके अंदर कोई दोष नहीं था, फिर भी प्रहलाद को उन्होंने क्यों दुख प्रदान किया. और प्रहलाद की बात छोड़िए, प्रहलाद तो उनका स्वयं पुत्र था, पुत्र को क्यों इतना तकलीफ दिया. स्वाभाविक तरीके से माता पिता जो हैं वो पुत्र से प्रेम करते हैं और कभी भी उनको मारना नहीं चाहते. भले कोई गलत करता है तो उनको थोड़ा डांट देंगे लेकिन मारना नहीं चाहते, मारते नहीं है. व्हाट टू स्पीक ऑफ टॉर्मेंटिंग सन्स विद ऑनर देयर फादर हु आर डिवोटीज एंड हु आर ओबीडियंट. जो प्रहलाद जैसे इतने अच्छा गुणों से संपन्न पुत्र है उनको मारने पे तुला हो गया. तो मैं ये जानना चाहता हूं प्रहलाद जी को हिरण्यकशिपु ने क्यों मारने पे तुला हो गया. तो जैसे युधिष्ठिर महाराज ने इस प्रकार का प्रश्न पूछे तो नारद मुनि आगे पांचवें अध्याय में वो शुरू करते हैं कि नारद जी का पता आगे बढ़ती है कि हिरण्यकशिपु ने नारद को क्यों मारना शुरू किया. आप सबको मालूम है कि नारद जी कहते हैं द डेमोन्स्ट्रेटेड बाय हिरण्यकशिपु एक्सेप्टेड शुक्राचार्य एज ए प्रीस्ट परिचलित शुक्राचार्य टू सन. शुक्राचार्य का दो पुत्र थे तंड और अमर, और वो हिरण्यकशिपु के महल के नजदीक में निवास करते थे. और ये तंड और अमर जो हैं वो प्रहलाद को शिक्षा दे लिए वो तत्पर थे. हिरण्यकशिपु ने कहा था तंड और अमर को, तुम जाओ, तुम दोनों मेरे पुत्र को अच्छी तरह से आप पढ़ाओ. तो ये प्रहलाद को एक दिन हिरण्यकशिपु ने बुलाया था. तो प्रहलाद को एक दिन हिरण्यकशिपु जब बुला के एक दिन उन्हें प्रहलाद से उन्होंने पूछा हिरण्यकशिपु ने, हे पुत्र मेरे पास आओ, तपच्छ खतयाम वत्स मन्यते साधु यद भवान भवान. हे वत्स, हे पुत्र, उनको गोद में बैठा के उनसे प्रेम करते हुए हिरण्यकशिपु ने पूछा प्रहलाद से, तुम बताओ सबसे जो श्रेष्ठ जो अच्छा चीज जो तुमने सुना है अपने गुरु से थंडर अमर से वो तुम बताओ. जैसे प्रहलाद ने इस बात को सुना, बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है उसको प्रहलाद उच्चारण करते. तो प्रहलाद उवाच तत्साधु मन्य सर्वर्याम देहिनाम साधु तदा समुद्विग्न मनाधियाम असद्ग्राहात हित्वा सपाटम गृहमंद कूपम वनम गतो यद्धरिमाश्रयेत. तो पहला श्लोक में ही प्रहलाद ने हिरण्यकशिपु के ऊपर एक बाम डाला. ने कहा तत्साधु मन्य सर्वर्याम देहिनाम, तो ने कहा कसुरवर्याम, एक छोटा सा बालक, पिताजी को पिताजी नहीं बोला, उन्हें क्या कहा असुरवर्या, ये असुरों से सबसे असुर है. तत् साधु मन्ये, मैं मेरे हिसाब से मैं मानता हूं सबसे सर्वश्रेष्ठ जो चीज जो मैंने सीखा है क्या है, वो क्या है, सदा समुद्रिक्त मना दियाम असत ग्राहात असत वस्तु को स्वीकार करके. सदा समुद्रिक्त मना, लोग जो है उनका मन जो है हमेशा चिंताग्रस्त रहता है. समाज सदा समुद्विग्न मना हित्वात्मपाठम गृहमंद कूपम हित्वात्मपाठम, आत्मपाठ को त्याग करके जो भगवद्गीता भागवतों को पाठ किए बिना वो क्या कर रहे हैं, गृहमंद कूपम एक घर में निवास करते हैं, वो घर कैसा है अंधकूप के बराबर है. ऐसा अंधकार अंधकूप है, कितना गहरा है वो नहीं मालूम. वैसे अंधे कुएं में पड़े हुए हैं उसको त्याग करके, हित्वा उनको त्याग कर क्या करना चाहिए, वनन गतो यद हरिमाश्रय का, वन में जाना चाहिए और हरि का शरण लेना चाहिए. और जैसे प्रहलाद महाराज ने इस बात को कहा तो तुरंत हिरण्यकशिपु को बहुत क्रोध आया, क्रोध भी आया और साथ साथ में सोचा कि बच्चा है. तो ऑन हियरिंग द प्रहलाद वर्ड विच अ साइड टुवर्ड्स एनिमी, तो हिरण्यकशिपु लाफ, अरे मेरा बच्चा कुछ बोलता, ऐसा लगता है कि मेरा बच्चा का जो बुद्धि है मेरे दुश्मनों ने भ्रष्ट कर दिया है। तो तुरंत उन्होंने कहा चंड मर्द को, मैंने इसे बच्चे को तुम्हारे हवाले सौंपा था ताकि तुम हमने असुर विद्या सिखाओगे, ये सब क्या सिखा रहे हो तुम लोग। ऐसा हो सकता है कि जो हमारे दुश्मन लोग जो है आपके गुरुकुल में आके इन बच्चों को बिगाड़ रहे होंगे, ध्यान रखना। मनते सत्यम कत्ये मामृषा बालम अस्ति कुतत्तुभ्यम एषा बुद्धि विपाश्रयः। डियर बॉय, गुड फॉर्चून टू यू, प्लीज स्पीक द ट्रूथ, डू नॉट लाई, हाउ हैव योर इंटेलिजेंस बीन चेंज्ड। हाँ, बताओ तुम्हारा बुद्धि को कौन भ्रष्ट किया है। ओ बेस्ट ऑफ योर फैमिली, योर एनिमीज पोल्यूटेड योर माइंड, तुम्हारा मन को कोई दुश्मनों ने आके तुमको बिगाड़ा है कि नहीं। यू आर ऑल, वी आर ऑल योर टीचर्स एंड वी आर वेरी ईगर टू हियर। तो संडा बाबू ने कहा कि हे बच्चा तुम बताओ कौन तुम्हारा बुद्धि भ्रष्ट किया है। तो आगे प्रहलाद जी कहते हैं कि ये जो विचार है, ये मित्र है मेरा दुश्मन है, ये अज्ञान से उत्पन्न होता है। इट इज ऑल बिकॉज ऑफ योर इग्नोरेंस। असल में हमारा ना मित्र कोई है जगत में, ना दुश्मन है। इस प्रकार जैसे प्रहलाद इस प्रकार बोलने लगे तो ये संडवर का दिमाग और खराब हो गया। तो वो सोचने लगे अभी हम क्या करेंगे, अभी ये तो बच्चा तो इतने बड़े बड़े ज्ञान की बातें कहता है, फिर वापस लेके जाएंगे उनको और कड़ी से शिक्षा देंगे। तो द ग्रेट सोल प्रहलाद बिकेम साइलेंट आफ्टर सेइंग दिस। द एंग्री किंग सर्वेंट ग्रेट डिस्टर्स जस्ट एज देम, सोचने अभी क्या करेंगे। अरे प्रहलाद को खूब डांटने लगे, तुम अस्तित्व में कहां से पैदा हो गया, पता नहीं लगता कि हमारा नाम खराब हो रहा है। हम आपको सिखा रहे धर्म अर्थ काम इत्यादि इन चीजों के विषय में, तुम सीखो इन चीज के बारे में। कुछ समय के बाद वापस इन शिष्यों ने बहुत प्रयास किया प्रहलाद को सिखाने के लिए, सिखा के वापस वो क्या किए प्रहलाद महाराज को हिरण्यकश्यप के पास। वेलकमिंग द बॉय हू फेल्ट द फीट फॉर हिज ब्लेसिंग। अभी माँ प्रहलाद की माँ ने क्या किया, देने उनको बहुत अच्छी से सजाई, सजा के वो माँ पिताजी के पास लेके गई। अभी पिताजी ने क्या किया, प्रहलाद महाराज को गोद में बिठाए, बड़े प्रेम से पूछा, अभी प्रहलाद तुम बताओ तुमने क्या सीखा। हिरण्यकश्यप ने पूछा, प्रहलाद माई डियर सन लॉन्ग लाइफ टू यू, तुमने जो भी सीखा उसमें सबसे श्रेष्ठ चीज क्या है वापस बताओ। तो प्रहलाद ने जो हमारे जो फेमस प्रसिद्ध श्लोक है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम आत्मनिवेदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम यदि विष्णु विष्णु भक्ति नवलक्षण भगवत क्रियते भगवत के तन मन्ये अधितमुत्तमम। प्रहलाद महाराज ने कहा कि मेरे हिसाब से सबसे उत्तम चीज यही है कि भक्त कृष्ण का नाम लेना चाहिए, श्रवण करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, उनका स्मरण करना चाहिए, नवदा भक्ति करना चाहिए। और क्रियते भगवत के जो भगवान को अर्पण करके सारे कार्य करता है, तो इससे बढ़कर इस जगत में कोई चीज नहीं है। जैसे हिरण्यकश्यप ने इस बात को सुना, तुरंत तो उनका जो वो होंठ एकदम कांपने लगे और बहुत गुस्से से शुक्राचार्य के पुत्रों से एकदम डांटना शुरू कर दिया, तुम मूर्ख लोग, मैं अपने बच्चे को भेजा तुम्हारे पास शिक्षा देने के लिए, तो क्या सिखा रहे हो। ऐसा लगता है कि तुम दुश्मनों का कोई दुश्मन नहीं है, आप ही मेरे दुश्मन हो, मेरे साथ में रहते हो। और ऐसा लगता है कि इन दिस वर्ल्ड दीज आर यू देयर डिसऑनेस्ट फॉल्स फ्रेंड डिस्गाइज जनरल, भले यहां कितना भी झूठ तरीके से व्यवहार करने लग जाओगे, लेकिन फिर भी ये बच्चे के द्वारा मुझे पता लग गया कि आप ही हो कारण। तब ये गुरुपुत्रों ने करना शुरू किया, थंडर राउंड कहा कि वो इंद्र के दुश्मन हिरण्यकश्यपु, आपके जो पुत्र हैं जो भी कह रहा है हमने कुछ भी नहीं सिखाया है, वो पता नहीं उनको कहां से आता है, ये हमको कोई इससे लेना देना नहीं है, ये हमारा कोई इसके अंदर दोष नहीं है। हमने तो जो भी भौतिक विद्या है वो देने के लिए प्रयास किया, सूर्य विद्या देने के लिए प्रयास किया, लेकिन तुम्हारा बच्चा ही ऐसा है तो हम क्या करेंगे। हाँ, इस प्रकार ब्राह्मणों को डांटना ठीक नहीं है। हाँ, आप इस प्रकार हमको डांट रहे हो, ये उचित नहीं है। अगर आप ब्राह्मणों को इस प्रकार करोगे बोलोगे तो आपको ही अशुभ होगा। तो जैसे इस बात को सुना हिरण्यकश्यपु रिसीव द रिप्लाई, तुरंत प्रहलाद महाराज की ओर हिरण्यकश्यपु घूम के देखे, हो अशुभ पुत्र, अगर इन लोगों से तुमने शिक्षा ग्रहण नहीं किया है तो तुमको ये शिक्षा कहां से प्राप्त हुआ है, कौन सिखाए है। तो प्रहलाद महाराज और एक बॉम्ब डालते हैं हिरण्यकश्यपु के ऊपर, देखिए, मतिर न कृष्णे परतस्तो वा मिथ्यो विपद्येत गृहव्रतानां रांत गोभीर्विशतम तमिश्रम पुनः पुनश्चर्वित चर्वणानां। ने कहा ये जो शिक्षा जो मुझे मिला है वो कि मतिर न कृष्णे, ये जो कृष्ण मुझे मति लगा हुआ मेरा, परतस्तो वा मिथ्यो विपद्येत, ना आपके द्वारा ना ये टीचर लोगों के द्वारा, ये दोनों मिला के भी वो मुझे प्राप्त नहीं हुआ है। कृष्ण की मति जो है वो ऐसा नहीं कि वो किसी और के द्वारा प्राप्त होता है, आप लोगों के द्वारा निश्चित रूप से प्राप्त नहीं हुआ है। गृहव्रतानाम अदांत गोभीर विशतम तमिश्रम, ये आपके जैसे जो टीचर लोग हैं ये क्या कर रहे हैं, अदांत गोभीर विशतम तमिश्रम, सभी लोग तमिश्रम अंधकार या नरक में जाने वाले हैं। पुनः पुरा चरित चरवनानाम, जो वापस चबाए हुआ चीज को चबाने की जो शिक्षा दे रहे हो, इंद्रदत्त की शिक्षा, इसकी वजह से आप सब लोग नरक में जाओगे। नते विदु स्वार्थ गतिम हि विष्टुम दुरातया ये बहिर्तमानिना अंध हितांधे रूपगीयमान उपनीयमान तेपि संत्य उधामि बद्धा। प्रहलाद महाराज ने शिक्षा शुरू कर दिए, जो एक अंधा व्यक्ति और दूसरे अंधे व्यक्ति को लेके दोनों खड्डे में गिरेंगे, तो वैसे ही आप लोगों का शिक्षा है। और नैषा मति स्तावदुक्रमाग्रिम, ये जो भगवान के प्रति जो भक्ति है वो तभी प्राप्त होती है जब हम महत् पाद रजोभिषेकम महीयसाम पाद रजोभिषेकम निष्किंचनानाम नवनीत यावत, जब तक हम भगवान के या भक्तों के चरण कमलों की रजों के द्वारा अपना सर को अभिषेक नहीं करेंगे तब तक इस प्रकार की चीज प्राप्त नहीं होता है। जैसे प्रहलाद महाराज ने इन बातों को कहा तो हिरण्यकश्यपु धाम उनका क्रोध आ गया, आंख एकदम लाल हो गए, और हिरण्यकश्यपु तुरंत कहा देखो ए असुरों, ये बालक को लेके जाओ और उसको मारो तुरंत। तब इस बालक को प्रहलाद को लेके गए और लेके उनको मारने के लिए सारे जितने भी लोग है वो प्रयास करने लगे। तो प्रहलाद महाराज इज ओनली 5 years old विद अनफिट फॉर एनी अफेक्शनेट फादर। हिरण्यकश्यपु ने कहा कि भले ही 5 साल का पुत्र है, मेरा प्रेम का योग्यता उन्हें खो गया है, क्योंकि वो उन्होंने अपनी विश्वास विष्णु के ऊपर रखा है जो मेरा दुश्मन है। समवन एल्स टेल इज बेनिफिशियल लाइक ए मेडिकल हर्ब इज ट्रीटेड लाइक ए सन। कभी कभी ऐसा होता है कि अगर मान लीजिए कोई ऐसा एक जड़ी बूटी है उसके वजह से आपका इलाज हो सकता है, उस जड़ी बूटी को स्वीकार करेंगे, लेकिन अगर अपना ही हाथ है, अगर उसके अंदर कुछ ऐसा रोग हो गया जिसकी वजह से पूरा आपका शरीर को नष्ट करता है, उस आपको ही काटा जाता है। अभी अभी हमारा ये सलाह जो है मेरे लिए वो ऐसा बीमारी हो गया है जो अभी फैलेगा तो पूरा हालत खराब हो, इसको मारो, उसको काटो, खत्म कर दो उसको। एनिमी डिस्गाइज इज अ फ्रेंड इज अनकंट्रोल्ड सेंस ऑफ ए सेज। अभी ये हिरण्यकश्यपु कहता है जो दुश्मन है लेकिन मित्र के रूप में, बंधु के रूप में है, ये उस प्रकार है जैसे एक साधु के लिए अनियंत्रित इंद्रियां हैं, उसके लिए वो इंद्रियां दुश्मन है, भले वो खुद की इंद्रियां हैं, उसी प्रकार प्रहलाद जो है वो मेरा दुश्मन है। इस प्रकार अनेकों बातों कहते हिरण्यकश्यपु ने क्या किया, चलो जाओ उनको मारो, आदेश दिया। तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा, वो नाराज जी ने युधिष्ठिर महाराज को कहा, ये बच्चे को प्रहलाद को मारने के लिए बहुत प्रयास किए, तभी वो लोगों ने क्या किया, बड़े बड़े हाथियों के नीचे से कुचलने के लिए प्रयास किया। और उनको सांप के बीच में डालने के लिए प्रयास किए और उनको बड़े पहाड़ से नीचे गिराए, उनको बहुत ठंडी गर्मी के अंदर डाल दिए, बड़े बड़े उनके बहुत जो त्रिशूल है, तलवार है, उन सब से मारने के लिए प्रयास किए। इतना सब कुछ प्रयास करने के बाद भी कोई असर नहीं पड़ा। He has unlimited powers in fearless and deathless, perhaps posing his own my death. जैसे इस प्रकार हुआ, खबर मिला हिरण्यकशिपु को कितना मारने के लिए प्रयास किए लेकिन फिर भी बच्चे कुछ नहीं हो रहा है। Though he is only a child and is not far from me, he remains energetic in mind, never forgetting his enemy Vishnu. He is capable of saving death like Shunapesha. Shunakshepa करके एक तागवत में एक प्रसंग आता है, वो भी मृत्यु से बच गए थे और इधर हिरण्यकशिपु सोच रहा है कि प्रहलाद तो मेरे साथ में है और इतने सारे सैनिकों को लगा उनको मारने के लिए लेकिन फिर भी उनका कुछ नहीं हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है कुछ करना पड़ेगा। While he was thinking in this way, wrapped up his bodily luster with downcast face, Sand and Amar spoke to him in private. हिरण्यकशिपु घबरा गए, अभी इतना सब कुछ नहीं, मरता क्यों नहीं है। तब संड और अमर हिरण्यकशिपु को वो बोलने के, आप चिंता मत कीजिए, अभी हमारे गुरु जो है, हमारे पिताजी शुक्राचार्य, वो आएंगे, वो आके एकदम बिल्कुल बराबर कुछ करेंगे। कीप हिम बाउंड विथ वरुण रोप्स, उनको बांध के रखो, शुक्राचार्य आते ही उस कुछ ना कुछ सुझाव होगा, आप चिंता मत कीजिए। तो देर आफ्टर संड और अमर ने क्या किया, तो प्रहलाद महाराज को लेके गए और शुक्राचार्य आने तक उनको उधर रखे। जैसे टीचर्स वेंट होम टू अटेंड देयर हाउस होल्ड अफेयर्स, सारे शुक्राचार्य आए और वापस प्रहलाद महाराज को स्कूल में लेके गए और बहुत कड़ी तरीके से शिक्षा देना शुरू किया। शिक्षा देना जैसे शुरू किया तो क्या हुआ, जिससे इंटरवल होता है, उनके जो संड और अमर गए कुछ तो शिक्षा दे के गए, प्रहलाद महाराज ने क्या किया, सारे बच्चों को बुलाए, उनके बहुत मधुर आवाज से बुला के उन सारे बच्चों को उनने शिक्षा देना शुरू किया। तो प्रहलाद महाराज का ये शिक्षा है अपने स्कूल मेट्स को, उनके जो गुरुकुल के बच्चों के साथ, बड़ा अद्भुत शिक्षा है। तो ये शिक्षाओं का वर्णन भागवत के सातवें स्कंध के छठे अध्याय में हुआ है। ये पूरा अध्याय जो है प्रहलाद महाराज का ही शिक्षाएं हैं, तो उनमें से कुछ लोगों को थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो प्रहलाद महाराज अपने बच्चों को, ये 5 साल के आयुष के हैं और भी जो भी असुर के बच्चे हैं, असुरों के बच्चे हैं, प्रहलाद महाराज की इतना मीठा स्वभाव, इतना मीठा वचन है, ये सुन के सारे बच्चों के साथ में बैठ के प्रहलाद महाराज का प्रवचन सुनना शुरू कर दिया। प्रहलाद महाराज ने कहा, श्री प्रहलाद वाच कौमाराचर प्रज्ञ धर्मान भागवता निहा दुर्लभम मानसम जन्म तदप्य ध्रुवम अर्थदम। शुरू किया कि ये जो मनुष्य जन्म है, कौमारेत आचरित प्रज्ञो धर्मान भागवता निहा, क्योंकि प्रहलाद महाराज के अन्य मित्रों का ये प्रश्न ये था, तुम ये सब कर रहे हो, ये अभी क्या करने की जरूरत है, उस प्रश्न का जवाब में, हम तो बच्चे हैं, उस प्रश्न का जवाब देते हुए प्रहलाद महाराज ने कहा, कौमारेत आचरित प्रज्ञो धर्मान भागवता निहा। तो उनका प्रश्न ये था, ये धर्म वर्म जो है बड़े लोगों के लिए है ना। तब प्रहलाद महाराज कहते हैं, ये धर्म की बात जो कह रहा हूं, ये उस धर्म की बात नहीं कहता हूं जो संड अमर ने सिखाया था, ये जो धर्म मैं सिखा रहा हूं वो कौन सा धर्म है, धर्मान भागवतानिहा, ये भागवत धर्म है। और ये भागवत धर्म जो है वैसे कि बड़े होने के बाद ही किया जाता है, ये वर्णाश्रम जो सही बात है, वर्णाश्रम धर्म बड़े होने के बाद किया जाता है, लेकिन ये भागवत धर्म जो है कौमारे आचरित प्रज्ञो, कौमार अवस्था से किया जाता है ये। अगर कोई सोचेंगे बड़ा होने के बाद करेंगे, बड़ा होने के बाद इतना सारा झंझट रहता है, उस झंझट में अनेकों अनेकों धर्म की जिम्मेदारियों की वजह से ये भागवत धर्म नहीं हो पाता, इसलिए अभी बेस्ट टाइम है, बड़े होने के बाद वो करो, ये जिम्मेदारी है, वो उसका जिम्मेदारी, उसकी वजह से भागवत धर्म नहीं हो पाता। इससे प्रहलाद महाराज ने कहा, यही बेस्ट टाइम, यही राइट टाइम है, युवावस्था ही राइट टाइम है, बचपन की अवस्था में ही भागवत धर्म को अच्छी तरह से किया जाता है। धर्मान भागवतानि हां दुर्लभम दुर्लभम मानुषम जन्म। अगर आप ये भी सोचे कि नहीं थोड़ा समय के बाद करेंगे, नहीं, ये मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है, अभी मिला है, कभी भी इसका मृत्यु हो सकता है, कभी मर सकते हैं, इसलिए अभी जीवन है तो कर लो। दुर्लभम मानुषम जन्म, और साथ साथ में क्या है, अपि अध्रुवम अर्थदम। तुम सोचोगे अध्रुवम है, अभी जाने दो, अभी अभी मौज कर लेंगे, अगली बार देखेंगे, नहीं, अगली जन्म में पता नहीं कौन सा जन्म हो सकता है, किसको नहीं मालूम। और साथ साथ में बात यह है कि अर्थदम, ये मनुष्य जन्म ही एकमात्र चीज है जो हमको वास्तविक अर्थ को प्रदान कर सकता है, कृष्ण प्रेम को प्रदान करने के लिए मनुष्य जन्म ही एकमात्र साधन है। इसलिए इस श्लोक में दुर्लभम मानुषम जन्म, अध्रुवम अर्थदम, ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। अध्रुवम का अर्थ क्या है, वो बहुत जल्दी कभी भी मर सकते हैं, इसलिए बहुत जल्दी बहुत सीरियसली स्वीकार करो। और अर्थदम, अर्थदम का ये अर्थ ये नहीं कि ठीक है अभी जल्दी मर जाएंगे, थोड़ा सा जीवन है चलो मौज कर लेते, नहीं, यही जन्म में ही मनुष्य जन्म में ही हमको भगवान की भक्ति करना चाहिए। तो प्रहलाद महाराज ने इस प्रकार कहा, आगे कहा, यथा हि पुरुषस्यार्थे विष्णोर्पादोपसर्पणम् यत् एष सर्वभूतानां प्रिय आत्मेश सुहृत्। तो हमको ऐसी भक्ति करना चाहिए, वन शुड परफॉर्म भक्ति विद मेथड्स विच अलो वन टू सरेंडर टू द लोटस फीट। हमारा एक ही उद्देश्य है किस प्रकार हम भगवान का शरण लें, जैसे एक कृष्ण के साथ में आत्मा ईश्वर सुहृत, किसी भी भावना से पांचों रसों में कृष्ण की सेवा किया जा सकता है। सुगमत्येन्द्रिकं दैत्य देह योगेर देहिनां सर्वत्र लभ्यते दैवात् यथा दुःखं मन्यथा। अगर कोई सोचे क्या है अभी भक्ति करते रहेंगे तो क्या होगा, हमारा भौतिक जीवन से कैसे चलेगा, थोड़ा सा सुख चाहिए, थोड़ा सा जीने के लिए चाहिए, राज महाराज कहते आज मिल जाता है। दैवात, दैवात का अर्थ है जैसे बिना चाहे हमको दुख मिलता है कि नहीं, वैसे बिना चाहे सुख मिल जाता है। ये सुख और दुख जो है हमारे हाथ में नहीं है, इसलिए ये सुख की प्रयास करना हमारी मूर्खता है। जो आपकी कर्मों में है वो अपने आप आएगा, सुख हो दुख हो। तो इसलिए मैं ये सोचना कि नहीं मैं मेहनत करके वो प्राप्त करूंगा, ये मूर्खता है। मेहनत करने का भी कुछ चीजें प्राप्त नहीं होता है, कुछ चीजें मेहनत करने किए बिना ही प्राप्त हो जाता है। तो प्रहलाद महाराज अपने बच्चों को बड़ा सुंदर शिक्षा देते हैं। वैसे तो एक एक श्लोक ही एक एक दिन का प्रवचन का दिया जा सकता है, लेकिन ये ध्यान में रखना चाहिए। प्रहलाद महाराज भी कहते हैं कि अगर एक बार कोई फंस गया भौतिक जगत में, भौतिक जीवन में, भौतिक आसक्ति में, तो बहुत मुश्किल है, खास करके स्त्रियों का संगति की वजह से, पत्नी की संगति में जो सुख प्राप्त होता है, बच्चों की धोती बात सुनकर जो सुख प्राप्त होता है, उस पर एकदम फंस जाता है और उससे मुक्त होना बहुत मुश्किल है। इसलिए अभी एकदम बिल्कुल राइट टाइम है, अभी भौतिक जगत से आप छोड़ के आप पूर्ण तरीके से कृष्ण का शरण ग्रहण करो करके, जैसे प्रहलाद महाराज ने इस प्रकार सारे बाल बालों को शिक्षा प्रदान किया। कैसे शिक्षा प्रदान किया, तो सारे जितने भी बच्चे हैं प्रहलाद महाराज की बात सुने, श्री दैत्य पुत्र ऊँचू हुए। तो ये प्रहलाद महाराज की बातें सुन के सारे जितने भी दैत्य पुत्र है वो इस प्रकार बोलेंगे, बोलना शुरू किया प्रहलाद महाराज को, प्रहलाद तुम वयम चापि नार्थे नयम विद्महे गुरुम। तो हम ये जानते हैं कि तुम्हारे लिए ये संड मर्क के छोड़ के कोई और गुरु तो हमने देखा नहीं है। एताभ्याम गुरु पुत्राभ्याम एताभ्याम गुरु पुत्राभ्याम, दोनों गुरु पुत्र है हमारे, ये जो शुक्राचार्य के पुत्र है ना, बालानाम अपि है ईश्वरौ, बचपन से हम इनको ही देखे, और मैंने कभी नहीं देखा कि आप कहीं बाहर जाके आए हो। मैं हम जानना चाहते तुमने ये सब कहाँ से सीखा है, वे लर्न ऑल दिस थिंग्स फ्रॉम। तब प्रहलाद महाराज अपना ही चरित्र अभी सातवें स्कंद के सातवें अध्याय में वो कहना शुरू करते हैं। तब प्रहलाद महाराज कहते हैं क्या हुआ, श्रीनारद उवाच एवं दैत्य दैत्य सुरई पृष्ठो, जैसे दैत्य के पुत्रों ने इस प्रकार पूछा, महाभागवतो सुरः, महाभागवत जो प्रहलाद महाराज ने उवाच तम सम संयमा न स्मरण मद अनुभाषितम, इस प्रकार प्रहलाद महाराज बोलना शुरू किए। प्रहलाद महाराज ने कहा कि जब मेरे पिता हिरण्यकशिपु जब तपस्या करने गए थे, अभी हमने वो स्टोरी छोड़ा था, उधर तपस्या करने गए थे, इंद्र हिरण्यकशिपु के महल में गया था, वो स्टोरी प्रहलाद महाराज कहते हैं कि मंदार पर्वत में तपस्या करने गए थे, तब नारद जी ने क्या किया, मेरे जो माँ है उनको खींचते हुए लेके गया ये भय के साथ कि मुझे मारने के लिए, मेरे उनके गर्भ में छोटा हिरण्यकशिपु है, कहीं ये बाहर आके और एक हिरण्यकशिपु, एक से ही हम परेशान है, दूसरा आ गया तो दोस्त का तकलीफ हो जाएगा। और जैसे जा रहे तो क्या हुआ, नारद जी ने उनको रोका। नारद जी ने कहा कि इंद्र को तुम क्या कर रहे हो, इंद्र ने कहा कि इधर एक छोटा हिरण्यकशिपु उसको मारने जा रहे, तो तब नारद जी ने इंद्र को कहा नहीं नहीं इनके पेट में एक महाभागवत है, बड़ा महान भक्त है। तो जैसे इंद्र ने बात को सुना तुरंत कयादु का परिक्रमा की, कयादु का परिक्रमा करके वो निकल पड़े। नारद जी ने क्या किया, मेरी माँ को अपने आश्रम में रखा, आश्रम में रखे तो नारद जी का स्वभाव है कृष्ण कथा को सुनाने लगे, और मेरी माँ वो सुनती गई लेकिन सोती रही, लेकिन मैं माँ के बच्चे में रह माँ के गर्भ में रह के तो सब कुछ मैंने सुना था, तेज ब्रॉट माई मदर हर्मिटेज माई चाइल्ड प्लीज रिमेन हियर, तुम इधर रहो करके नारद जी ने मेरी माँ को रखा। और मर्सिफुल एंड केपेबल नारद गिव द ऑस्पिशियसनेस चाइल्ड एंड डिलीवर आफ्टर रिवेल हस्बैंड बाय टच टीचिंग भक्ति योगा एंड भक्ति ज्ञाना टू मी एंड माई मदर, मुझे और मेरी माँ को दोनों को उन्होंने सुनाया, लेकिन तकलीफ यह है कि मेरी माँ असुरी परिवार में होने की वजह से, स्त्री का तो होने की वजह से वो सब भूल गई, लेकिन मेरे अंदर नारद जी ने जो भी बातें उन्होंने कहा उन सबका स्मरण मुझे रहा। तो नारद जी ने मुझे भगवान के बारे में भक्ति के बारे में सारे शिक्षाएं प्रदान की, और नारद जी वापस प्रहलाद महाराज अपने शिष्यों को अपने मित्रों को नारद जी ने जो भी उनको सुनाया था जब माँ के गर्भ में थे तो सब कुछ वापस सुनाते हैं। और जैसे प्रहलाद महाराज ने इस प्रकार सुनाया, वो संस्त डेमन्स यक्षस राक्षस रुमेन शूद्रस कवर कर्ड मैन बर्ड्स एनिमल्स एंड ऑल सिंपल लिविंग एंटिटीज कैन अटेन द स्पिरिचुअल बॉडीज अलोंग विद एसोसिएशन विद लॉर्ड, तो सब लोग जो है आध्यात्मिक जीवन को प्राप्त कर सकते हैं, आध्यात्मिक शरीर को प्राप्त कर सकते हैं, भगवान की जो या मनुष्य का परम धर्म है भगवान की जो भक्ति करना और गोविंद को प्राप्त करना। एतावान् एव लोकेऽस्मिन् पुंसः स्वार्थः परस्ततः एकांत भक्तिर् गोविंदे यथा सर्वथा तदीक्षणम्, यथा सर्वथा तदीक्षणम् व्हेन प्योर भक्ति अरण्य भक्ति इज प्रेजेंट एंड मैच्योरिटी वंस इज द लॉर्ड एवरीवेयर, इस प्रकार हर व्यक्ति जो है भगवान को हर जगह देख सकता है, शुद्ध भक्ति को प्राप्त कर सकता है। और जैसे प्रहलाद महाराज ने इन सारे बातों को उनके मित्रों को कहा, तभी संड अमर काये वापस आगे पूरा स्कूल को देखे, वो पूरा हर जगह कीर्तन चल रहा है प्रहलाद महाराज कीर्तन लीड कर रहे हो, ये सब कुछ चल रहा है। अभी बस अभी उनका हालत खराब हो गया, अभी बोला सीधा वो प्रहलाद महाराज को लेके गए हिरण्यकशिपु के पास, जाके बोलने लगे देखो तुम्हारा पुत्र क्या कर रहा है, केवल वही नहीं सारा जितने भी और लोग हैं उन सबको भ्रष्ट कर रहा है। तब हिरण्यकशिपु बहुत क्रोधित हो गए, क्रोधित हो गए, हे दुर्विनीता मंदात्मन कुलभेद सराधमा स्तंभन मत श्रावयत चित्तम निश्चे निश्चे सावत यमा यमक्षयम, तो उन्होंने कहा कि दुर्विनीता, हे पुत्र तुम नम्र नहीं हो। भक्त नम्र होते हैं लेकिन प्रहलाद नम्र थे, बहुत नम्र थे, हिरण्यकशिपु के सामने नहीं। तो हिरण्यकशिपु दुर्विनीता मंदात्मन, जो मंद बुद्धि वाला है, कुल भेद कराधमा, कुल भेद करने वाले हैं तो हम, तो इस प्रकार सब प्रहलाद महाराज को एकदम पूरा डांटने लगे। वैसे हिरण्यकशिपु प्रहलाद महाराज को डांट रहे या गाली दे रहे, लेकिन उसके पीछे सारस्वत अर्थ है। वैसे तो हिरण्यकशिपु प्रहलाद महाराज को बहुत गुणगान कर रहे थे। दुर्विनीता का अर्थ है, दूसरा अर्थ है जो बहुत अच्छा व्यवहार करने वाले हैं, जो दुर मतलब दुष्ट लोगों के प्रति विनीत भावना भी रखने वाले हैं। दुर्विनीता, दुर्विनीता कैसे हिरण्यकशिपु इस हिसाब से अर्थ क्या है कि तुम्हारे पास कोई विनीत भावना नहीं है, लेकिन दुर्विनीत और अर्थ क्या है, दुर्थ दुष्ट, दुष्ट लोगों के प्रति विनीत भावना रखने वाले, मंदात्मन साथ है मूर्ख। लेकिन दूसरा बात यह है, मंदात्मन का और एक अर्थ है ऑल्सो मीन्स ए पर्सन हु इज अटेंटिव टू द अनफॉर्चुनेट। जो मंद होता है उनके प्रति भी आत्म की भावना, अपनी अपनी मित्रता को दिखाना। और ऐसे कुल भेद कर, ऐसा अर्थ है कि जो कुल को भेद करने वाले हैं। लेकिन और एक अर्थ यह है कि अपने जो कुल है उसका विशेषता को स्थापित करने वाला। तो वैसे देखा जाए कि प्रहलाद महाराज को हिरण्यकशिपु डांट रहे, लेकिन सारस्वत अर्थ सरस्वती जी के हिसाब से कुछ और है। तो आगे कहते हैं, शुद्धस्य यस्य कंपिते त्रातो लोका सर्वेश्वरः तस्य मे भीत्वासु मूढ़ा तशानाम किं बलो चकात। हिरण्यकशिपु तुरंत बोलने लगे, हे मूर्ख, देखो जब मैं क्रोधित होता हूं तो सारे तीनों के सारे लोगों में सारे लोग, सारे देवी देव सभी लोग कंपित हो जाते हैं, और मैं देखता हूं तुम तो शांत बैठा है। तुम किसकी बल से तुम शांत बैठा है? बाई हूज स्ट्रेंथ यू आर सो फियरलेस एंड वायलेटेड माई ऑर्डर। मेरी आज्ञा को तुमने पालन नहीं किया, किसकी बल से कर रहा है? तब श्री प्रहलाद वाचा, प्रहलाद महाराज ने कहा, न केवलम मे भवत चराजन सवै बलान बलिनाम चपे चा परेशम। तुमने कहा न केवलम मेरा, ना केवल मेरा ही बल नहीं, मैं भवतस्य राजन, हे राजन तुम्हारा ही, तुम्हारा भी सवै बलम बलिनाम चपरेशम। जो बलिनाम, जो वास्तविक भगवान, जो सारे बल के आधार है, उनसे मना मिल रहा है। परे वरे में स्थिर जंगमाये ब्रह्मादयो येन वशं प्रणीतः। जो ब्रह्मादय, जितने ब्रह्मादि जितने देवता है सब जिसके वश में हैं, वो भगवान विष्णु, उनसे ही मुझे ही बल प्राप्त हो रहा है और साथ साथ में आपको भी बल प्राप्त हो रहा है। स ईश्वर कालो उरुक्रमो स्यात्। वो ईश्वर है, काल के नियंत्रण है और अनेकों अनेकों महान कार्य करने वाले उरुक्रम है। ही इज द स्ट्रेंथ ऑफ द सेंसेस माइंड, सारे इंद्रियां और मन के शक्ति हैं, और वो जो है भगवान सारे सृष्टि को करने वाले हैं। ही इज द मास्टर ऑफ त्रिगुण, तीनों गुणों के वो मालिक है। गिव अप योर डेमोनिक नेचर, तुम अभी अपना जो जो असुरी स्वभाव है त्याग करो, और तुम्हारा मन जो है वो शांत करके सभी जीवों के मित्र की भावना रखो। अस्तित्व में इस जगत में हमारा कोई दुश्मन नहीं है, हमारा मन ही हमारा दुश्मन है, तुम्हारा मन ही तुम्हारा दुश्मन है। अभी कौन कहता है? हिरण्यकशिपु को प्रहलाद कहता है। तो मैं ये कहता हूं, वो जो भगवान विष्णु है उनको पूजा करो। प्रहलाद हिरण्यकशिपु को बाद में, दास्यम पुत्र स्व ना विजीतलुम पटो लम पटो, फूलिश पर्सन लाइक यू, लंपट लोग, तुम्हारे जैसे लंपट लोग जो है, अपने जो छह दुश्मन है, जो हमारे सारे विवेक को चोरी करने वाले हैं, जो छह चोर है, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, इन सबको तुम नाश करने के लिए प्रयास करो। थिंक दे हैव कॉन्क्वर्ड द टेन डायरेक्शन, तुम सोचते हो तुमने दस दिशाओं को तुमने जीत लिया है, अपना काम क्रोध लोभ मोह को जीता नहीं तो दस दिशाओं को क्या जीतोगे तुम। वेयर आर द एमिनीज फॉर द पर्सन हू हैव कॉन्क्वर्ड द माइंड, जो लोग अपने मन को जीत चुके हैं वो उनके लिए दुश्मन कौन रहा है इस जगत में। देखिए प्रहलाद महाराज की एक एक शिक्षा अद्भुत शिक्षा है। 5 साल का बच्चा है, अभी कौन सी अवस्था में है, एकदम हिरण्यकश्यप क्रोधित है, उनका आंख कंप रहा है, लेकिन फिर शांति से प्रवचन दे रहा है। फिर कभी ब्रह्मचारी जो ज्वाइन करते हैं उसके जब पिताजी आके एकदम बिल्कुल क्रोधित हो जाते हैं तभी ऐसे प्रवचन देते हैं शांति से। अभी उनको एकदम इतना हालत खराब हो जाता है, मैं इतना क्रोधित हुआ, तुमको इतना डांट रहा हूं, तुम क्यों नहीं क्रोधित होते हो, इतना शांति से क्यों खड़े हो। तो वैसे इधर भी है, प्रहलाद महाराज एकदम शांति से प्रवचन दे रहे। आई उन्होंने कहा हु इज वाइज एंड हु इज इक्वल टू ऑल एनिमीज ऑल क्रिएटेड बाय इल्यूजन। ये जो दुश्मन जो है, ये मेरा दुश्मन है, ये हमारी मोह से अपनी मूर्खता से प्रकट होते हैं, कोई हमारा दुश्मन नहीं, कोई हमारा मित्र नहीं है। हिरण्यकशिपु जैसे उन्होंने सुना, हिरण्यकशिपु बोलने लगे वक्तम तम मातृ कामो मृत्यु कामो, चाहता है कि तुम अपनी मृत्यु को चाहता है, काम होती यो चिष्टतम यो अतिमात्रम दिक्कत से, तुम इतना बड़ा बड़ा बात बोल रहे हो, बीइंग बोस्टिंग ऑफ एक्सक्लूसिवली यू क्लियरली शो दैट यू डिजायर दैट टाइम पर्सन स्पीक्स इनोसेंट वर्ड। इस प्रकार तो मरने वाले होते हैं, इस प्रकार ऐसे इनकोहेरेंट वर्ड, ऐसे फालतू फालतू बातें बोलते हैं। तो अनफॉर्चुनेट प्रहलाद, तो यू हैव ऑलवेज डिस्क्राइब्ड ए कंट्रोलर, हमेशा तुमने एक ईश्वर की बात किया जो मुझसे भिन्न है, मुझसे अलग कोई ईश्वर है करके वर्णन किया, वो कहाँ है बताओ, वेर इज ही, इट इज एवरीवेयर, अगर वो हर जगह है तो क्या तुम्हारे सामने खंभ है अंदर है, बिकॉज यू आर स्पीकिंग सो मच नॉनसेंस, इतना तुम बड़े बड़े उठपटांग की बातें बोल रहे हो, मैं तुम्हारा सर को धड़ से अलग कर दूंगा। नाउ लेट यूर लॉर्ड, आओ आने दो, तुम्हारे जो तुम्हारा ईश्वर था ना वो आके उनको रक्षा करने दो, मैं तुम्हारा सर को धड़ से अलग कर दूंगा। इतना बहुत क्रोध से माइटी हिरण्यकशिपु कंटिन्यूअसली अब्यूजिंग इज एग्जॉल्टेड सन प्रहलाद, उनके प्रहलाद को निंदा करना शुरू किए और उन्हें अपने हाथ से तलवार लिया, रोज तुम्हें एग्जॉल्टेड क्रोन उनका जो सिंहासन से उठे और स्टक हिज फिस्ट अगेंस्ट द कॉलम, एक जो कंब है उसके ऊपर उन्हें उनको मुक्का मारा, और जैसे मुक्का मारे दैट टाइम विद इन द पिलर के फियरफुल साउंड, उस समय एक बहुत बड़ा आवाज आया, भयानक सा आवाज आया, तो ऐसा लग रहा था कि सारा ब्रह्मांड फटने वाला है। हे युधिष्ठिर सुनो, जैसे वो आवाज जो है देवता लोगों तक पहुंच गया, वे पता लगा कि कुछ तो हुआ है, दे थॉट देयर अबोड्स विल बी डिस्ट्रॉयड, सोचा कि पूरा ब्रह्मांड और पूरा हमारा जो ब्रह्म लोग है सब लोग ब्रह्मा जोत नहीं, मेरा ब्रह्म लोग अभी नहीं होने वाला है। तो उस समय while showering the extraordinary powers, Hiranyakashipu, who desired to kill his own son, अपने पुत्र को जो मारने की तत्पर था, वो astonishing tumultuous sound which he heard never before, आज तक ऐसा आवाज उन्हें कभी नहीं सुना था, upon hearing the sound, other leaders of the demons became frightened and could not see the origin of the sound. और जितने भी अन्य जितने भी हिरण्यकशिपु के अनुचर थे, वो कहाँ से आवाज आ रहा है, क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं मालूम पड़ा था। तब बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है जो इस पूरा प्रसंग को पुष्ट करने वाला श्लोक है, वो श्लोक इधर 8वां अध्याय का 7वां श्लोक 17वां श्लोक माना जाता है, 17वां श्लोक है, उसको मेरे बाद उच्चारण करने के लिए प्रयास कीजिएगा। सत्यम विधातुम निजवृत्त्यभाषितम ज्ञातिं च भूतेषु अखिलेषु चात्मना व्याप्तिं च भूतेषु अखिलेषु चात्मनः अदृश्यताद्यद्भुतरूपमुद्वहन् अदृश्यताद्यद्भुतरूपमुद्वहन् स्तम्भे सभायां न मृगं न मानुषम् स्तम्भे सभायां न मृगं न मानुषम् स्तम्भे सभायां न मृगं न मानुषम्। तो इस श्लोक में वर्णन किया गया भगवान प्रकट हुए। कैसे प्रकट हुए? सत्यम विधातुम निजवृत्य भाषितुम। ऐसे प्रहलाद महाराज को रक्षा करने के लिए भगवान प्रकट हुए। लेकिन प्रहलाद महाराज तो पहले भी बहुत सारे खतरे में थे, तब क्यों नहीं प्रकट हुए? जब प्रहलाद महाराज को पहाड़ से फेंका गया तब क्यों नहीं प्रकट हुए? जब उनको जो हाथियों के बीच में लगाया गया, डाल दिया गया, तो तब क्यों प्रकट नहीं हुए? तो इधर इसका वर्णन ये है कि सत्यम विदातुम निजवृत्य भाषितुम। निजवृत्य भाषितुम, भगवान के भक्त प्रहलाद महाराज, वृत्य, वृत्ति का अर्थ है भक्त, सेवक। तो प्रहलाद महाराज ने कुछ कहा, क्या कहा? कि मेरे ईश्वर कहाँ है, भगवान कहाँ है? हर जगह है। तो हर जगह है जैसे भगवान प्रहलाद महाराज ने कहा, तो कृष्ण चिंता हो गई। अभी हिरण्यकश्यप क्या करने वाले हैं? उसको स्तंभ को थोड़ा, तो प्रहलाद महाराज ने कहा कि स्तंभ में भगवान है, तो सारा दुनिया देख रही है। तो कृष्ण सोचने लगे, अगर मान लो कि स्तंभ से मैं प्रकट नहीं हुआ तो क्या दुनिया क्या सोचेगी? भक्त जो है झूठा है। तो कृष्ण को चिंता लगी, वैसे ही लोग को विश्वास है कि मैं झूठा हूं। क्योंकि बचपन में बहुत सारा झूठ बोला, महाभारत में झूठ ही नहीं बोला, झूठ बोलने के लिए भी बोला। वैसे लोगों का विश्वास है नहीं मेरे ऊपर। अभी विश्वास है तो किसके ऊपर है? भक्तों के ऊपर है। लेकिन अगर कहीं ये भक्तों के ऊपर भी विश्वास अगर चले जाएगा दुनिया में लोगों का, तो क्या उनका उद्धार कैसे होगा? इसलिए भगवान ने सोचा, भले ही मेरा वचन तोड़ दिया जाए, लेकिन भक्तों का वचन को संरक्षण करने के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाऊंगा। इसलिए भागवत में भी हम देखते हैं, स्व निगम अपाह्य, अपना वचन को तोड़ के भगवान ने क्या किया? भीष्म पितामह का वचन को सिद्ध किया। भगवान ने वचन लिया था कि मैं युद्ध में अस्त्र शस्त्र को उठाऊंगा नहीं, लेकिन भीष्म पितामह ने और एक वचन लिया था कि आज भगवान के हाथों में शस्त्र उठाऊंगा नहीं तो अर्जुन को मार दूंगा। ये दोनों में एक चीज होगा। तो भगवान ने क्या किया? अर्जुन को भी बचाना था, भीष्म पितामह का वचन को भी सिद्ध करना था, इसलिए उन्होंने क्या किया? अपना ही वचन को, इससे भगवान को क्या कहा जाता? अच्युत कहा जाता है। अर्जुन ने कहा, तेनयोर उभयोर मध्ये रथं स्थापयामि मे अच्युत। अर्जुन को विश्वास था भगवान अच्युत है। अरे भगवान क्या बन गए? ड्राइवर बन गए। भगवान ने अपनी पोस्ट को त्याग कर दिया, त्याग करके ड्राइवर बन गए, तो अच्युत हो गया कि नहीं? अच्युत का क्या है? जो अपने पोस्ट को कभी त्याग नहीं करते। लेकिन कृष्ण अभी अच्युत हो गए, अपना पोस्ट भगवान का पोस्ट था, उसको त्याग करके ड्राइवर बन गए। भले ही भगवान जो है अपना पोस्ट को त्याग कर देंगे, भगवान अपनी भगवत्ता को त्याग कर देंगे, लेकिन अपनी जो वास्तविक स्थिति क्या है, भक्त वत्सलता को त्याग नहीं करेंगे। इससे भगवान ने अर्जुन को कहा, कौन ते आ प्रति जानिया हमें भक्ता प्रणश्यति। हे अर्जुन, सारा जगत को घोषणा करो कि मेरा भक्त का नाश कभी नहीं होगा। अगर कृष्ण स्वयं कहते हैं तो लोग सोचेंगे, कह देते, कुछ भी बोलते थे कृष्ण। तो इससे अर्जुन, कृष्ण का अर्जुन को, अर्जुन तुम बोलो ये बात, ठीक है? क्योंकि अगर मान लो कोई व्यक्ति विश्वास, बाकी जितने भगवती में जो भी बातें कहा उसके ऊपर विश्वास करे ना करे, लेकिन ये बात के ऊपर विश्वास करेंगे, क्यों? जगत को माने भक्तों की वाणी को सिद्ध करने के लिए भगवान कुछ भी कर रहे थे। इससे अर्जुन तुम घोषणा करो नवे वक्ता नश्यति, मेरा भक्त नाश कभी नहीं होगा। तो ये सत्यम विधातुम निज प्रत्यभाषितम व्याप्तिम स भूतेश अखिलेश सात्मनः, वही भगवान जो सबके हृदय में निवास करते हैं वही क्या किए, व्याप्तिम स भूतेश अखिलेश सात्मनः अदृश्यत्याप्यत भूत दृश्य, आज तक कोई देखा नहीं ऐसा दृश्य, दृश्यता अति अद्भुत, अद्भुत रूप को उन्होंने धारण किया। उद्भवन स्तंभे सभायाम, कहा स्तंभ से प्रकट, कौन सा सार स्तंभ, सभा में था ना मृगम न मानसम, ऐसा रूप प्रकट हुआ। जब नरसिंहदेव प्रकट हुए तो क्या हुआ कि नरसिंहदेव या प्राकृतिक के समय सबसे पहला केवल आवाज आया था और पूरा उस आवाज में सब लोग तो भयभीत थे, एकदम धुआं धुआं जैसा था और किसी को मालूम नहीं पड़ रहा था क्या क्या हो रहा है। अभी हिरण्यकशिपु कोई मालूम नहीं पड़ रहा था कौन आया क्या हुआ, जैसे हिरण्यकशिपु थोड़ा सा आंख को कैसे किए सब उनको दिखाई पड़ा ये रूप, क्या रूप दिखाई पड़ा, नरहारी रूप, इतना भयानक सा रूप था। ये जो रूप को हिरण्यकश्यपु ने बड़ा ध्यान से देखा, क्या देखा उन्होंने, नरसिंहदेव ने क्या रूप दिखाया हिरण्यकश्यपु को, देखा उनकी आंख जो है एकदम पिघला हुआ सोना जैसा है और उनके दांत जो है बड़े तीव्र है, अरे उनके जो चेहरा है उसके ऊपर जो मेम है जो सिंह के ऊपर बाल होते हैं वो सूर्य के किरण जैसे हैं और उनका जो जिह्वा है वो एक तलवार जैसा था और इस फॉर्म वाज ट्रेम्बलिंग एंड दिस रिजिड ईयर्स पॉइंटेड अप, उनका कान एकदम ऊपर की होते और जिनके जो जो नाकों का नासिकाओं का जो गुफा है वो बड़े बड़े गुफाओं जैसे दिखाई पड़ रहा था। ओपन जॉस वर टेरिफाइंग, हिज बॉडी कवर्ड विथ हेयर वाइट लाइक मून विथ बियर्ड विथ ब्रॉड चेस्ट नैरो वेस्ट एंड थिक शार्प नेक रीच द स्काई, ही हैड अनकॉन्करेबल नेल्स एज वेपन्स ऑन हिज हैंड, हंड्रेड्स ऑफ आर्म्स हिज स्प्रेड इन ऑल डायरेक्शंस, हिज नॉर्मल वेपन्स एंड अदर एक्सलेंट वेपन्स ही मेड डेमोन्स्ट्रेटली। खाली दृश्य देख के सारे जितने भी असुर सब भाग गए। गॉड विष्णु हु पोजेसेस पावर लाइक मिस्ट्री योगी मेड हिज प्लान टू किल मी, तब हिरण्यकश्यपु सोचने लगे हाँ ऐसा लगता है कि अभी ये जो विष्णु ने ऐसा प्लान बनाया मुझे मुझे मारने के लिए, बट क्या उनका प्लान तो कुछ चलने वाला नहीं है, बड़े बड़े प्लान लोगों ने बनाया कुछ होने वाला नहीं है, अभी कौन मुझे क्या कौन क्या कर सकता है, ऐसा सोचते उन्होंने क्या किया अपना गदा लिया, हिरण्यकश्यपु ने अपना गदा लेके और सीधा पहुंचे उस भगवान के ऊपर अटैक करने के लिए। और जैसे पहुंचे हिरण्यकश्यपु एकदम भागते हुए नरसिंह के पास आए मारने के लिए, नरसिंह ने उसे पकड़ लिया मच्छर को बहुत देर पकड़ लिया, वो बाग करने लगा बीच में से, जैसे करने लगा तो जैसे कभी कभी क्या होता है कि गरुड़ जो है सांप को पकड़ता है, पकड़ के वो ऐसे पकड़ के सांप चिल्ला रहा है हाँ, और थोड़ा सा खेल खेल के में छोड़ देता है, ऐसा नरसिंह ने क्या किया हिरण्यकश्यपु को छोड़ दिया। और जैसे हिरण्यकश्यपु को छोड़ दिया हिरण्यकश्यपु सोचने लगे हाँ अभी देखो मेरे से भय भी था इसलिए छोड़ दिया हम जैसे महेश भाई भी हिरण्यकश्यपु थिंकिंग दैट द लॉर्ड वाज अफ्रेड ऑफ हिज पावर्स बिकॉज ही हैड एस्केप्ड फ्रॉम द लॉर्ड्स हैंड विथ हिज फैटिग ऑफ फाइटिंग गॉन टुक अप हिज स्वॉर्ड, अभी तलवार लिया, अभी गदा तो छोड़ दिया तलवार लिया, तलवार और ये डाल होता है लेके आगे पहुंचे भगवान के युद्ध करने के लिए। लाफिंग लाउडली द टेरिफाइंग साउंड एज ए लॉर्ड कैप्चर्ड द मैन हू मूव्ड अप एंड डाउन द स्पीड ऑफ ए हॉक, और भगवान ने क्या किया वापस हिरण्यकश्यपु को पकड़े पकड़ के जोर जोर से हंसते हुए और उन्होंने क्या किया उनको जैसे एक सांप जो है एक चूहे को पकड़ लेता है पुल्स फेल्ड हिज लिम्स अबाउट व्हेन कैप्चर्ड एंड प्लेस इन हिज लैप, क्या के अपने जंगों पर बैठाए बैठा के सुलाया सुला के गरुड़ अपीयर्स से पॉइजन स्नेक, जैसे गरुड़ जी एक सांप को वो चीर लेता है उसी प्रकार नरसिम्हदेव ने क्या किया हो हिरण्यकशिपु के पूरा शरीर को। तो ये जो है इट ट्रांसेंडेंटल ऑपरेशन है। द लॉर्ड लिक द एजेस ऑफ हिज गैस्पिंग माउथ विद द टंग, हिज नेम एंड फेस वर रेड बिकॉज ऑफ स्टेन्स द ड्रॉप ऑफ ब्लड एंड ओवर हिरण्यकशिपु इंटेस्टाइन्स इज गार्लैंड। तो अपनी इंटेस्टाइन को क्या बोलेंगे हिंदी में वो लेके अपने अपने गले में कुछ डाल दिए। लुक लाइक ए लायन आफ्टर किलिंग एन एलिफेंट, जैसे कोई एक सिंह एक हाथी को मारने का कैसे लगता है उसी प्रकार दिखाई पड़ रहे थे। द क्लाउड शेकन बाय द मेन फ्लड अवे, द प्लेन्स लॉस्ट देयर एफ्यूजन, अटैक्ड बाय हिज ब्रीदिंग द ओशन बिकेम एजिटेटेड, सारे सागर जो है ऊपर ऊपर चलने लगे। डायरेक्शंस क्राइड आउट इन फियर ऑफ हिज रोरिंग, सारे दिशाएं जो है वो सब भयभीत हो गए थे नरसिम्हदेव के प्रकार के क्रोध देख के। तो ऐसे पूरा वर्णन है। सीइंग द कॉज ऑफ फियर फॉर द एंटायर सी वर्ल्ड बीइंग किल्ड बाय द लॉर्ड इन द बैटल, द वाइज ऑफ देवतास देयर फेस बर्स्टिंग विद इंस्टेंट जॉय कवर्ड फ्लावर्स अगेन अगेन, सारे देवता लोग और देवियां सब लोग ऊपर से पुष्पों की वर्षा करने लगे। तब सब एकदम है नरसिम्हदेव बैठे हैं स्वयं, वो खुद गए और सिंहासन पर बैठ गए। वैसे कोई भी सिंहासन है कोई चीज भगवान को अर्पण किया जाता है, लेकिन हिरण्यकशिपु का वध करने के बाद नरसिम्हदेव ने ये कोई इंतजार नहीं किया कोई आके मुझे सिंहासन अर्पण करेगा भोग अर्पण करेगा, वो खुद जाके बैठ गए। ही जस्ट सैट सिंहासन पर बैठे। तभी सब देवता एक एक करके प्रार्थना करना शुरू किए। तो ब्रह्मा जी का एक प्रार्थना है तो हम उसको श्रवण करें। तो ब्रह्मा जी का जो प्रार्थना है, बाकी अन्य देवताओं का अपने अपने मंतव्य के हिसाब से प्रार्थना करने लगे। तो ब्रह्मा जी ने प्रार्थना किया, नथोस्मि अनंतस्य दुरंत शक्तये विचित्र वीर्याय पवित्र कर्मणे विश्वस्य सर्गस्थिति संयमान गुणे स्वलीलया संधत्ते यव्य अव्ययात्मने। तो ब्रह्मा जी ने प्रार्थना किया, ये आपका जो लीला विचित्र है, विचित्र वीर्याय पवित्र कर्मणे, विचित्र वीर्याय आपकी लीलाएं जो है विचित्र है। विचित्र का एक अर्थ ये है कि क्या है विचित्र के क्या बोलेंगे हिंदी में, विचित्र है या लेकिन विचित्र का और एक भी अर्थ है। ब्रह्मा जी कहते हैं विचित्र लीला के द्वारा हे भगवान, सबसे पहला आपके वजह से ये चार कुमारों के मन में आया, चलो वैकुंठ जाके देखते हैं। आपके वजह से जय विजय ने रोका, आपके वजह से चार कुमारों में क्रोध आया, आपके वजह से चार कुमारों में शाप दिया जय विजय को, और बेचारे उनके आपके पार्षदों को आपने असुर बनाया और आप ही ने उस असुर परिवार में एक भक्त को जन्म दिया, और आपकी वजह से ही हिरण्यकशिपु ने इतना बड़ा तपस्या किया, और आपकी वजह से ही मुझे प्रेरित किया आप उनको वरदान दो। अभी वरदान किया ये सब कुछ हंगामा करने के लिए आप ही आए और उसको मारे जिसको आपने असुर बनाया, ये सब क्या है, ये सब नाटक, ये शांति से बैठ नहीं सकते हो क्या आप? ये सब विचित्र भी इंडिया है, आपका कार्य बड़े विचित्र है। और साथ साथ में अद्भुत कर्मणे विचित्र वीर्याय पवित्र कर्मणे, लेकिन आप ये जो लीलाएं करते हो किसके लिए करते हो, पवित्र कर्मणे, सारे लोगों को पवित्र कराने के लिए लीलाएं करते हो, पवित्र कर्मणे विश्वस्य सर्गस्थिति संयमान गुणे ही, आप ही सारे जगत की सृष्टि करता हो और पालन करता हो और अंततः नाश भी आप ही करने वाले हो। स्वलीलया संदधत्ते अव्ययात्मने, आपकी लीलाओं के द्वारा सारे लोगों को आनंद प्रदान करते हो। इस प्रकार ब्रह्मा जी क्योंकि वो सृष्टि करता है वो अपने दृष्टिकोण से ये लीला कर रहे हैं। अभी शिव जी वो प्रार्थना करते हैं, भगवान आप ही काल हो, क्योंकि शिव जी जो है वो काल के नियंत्रण है। तो हम सोचते हैं कि मैं काल हूं, लेकिन अभी दिखाई पड़ रहा है काल क्या है। आज तक मैं सोचता था कि मैं काल का नियंत्रण हूं, अभी दिखाई पड़ा स्थिति आपके, आप ही वास्तविक नियंत्रक हो। तो आपका ये जो क्रोध है अभी शांत करो, क्योंकि आपका क्रोध ऐसा लग रहा है कि पूरा संसार को समय से पहले ही विनाश हो जाएगा, तो वो नहीं होना चाहिए, इसलिए आप शांत हो जाओ। तो सभी देवता अपनी अपनी दृष्टिकोण से प्रार्थना करते हैं, पितृलोक प्रार्थना करते हैं, पितृदेव पितृलोक के लोग। अभी हे भगवान, आपने हिरण्य किसी को जो वध कर रहे थे, आपने जो उनके पेट को छीरा था, हमको क्या दिखाई पड़ रहा, हमको जो हमारे जो लोग हैं हमको जो अर्पण करने करते थे वो सब हमको नहीं मिलता था, हिरण्यकश्यप को खा था। अभी आपने जब उनका पेट को छीरा तो हमको जो आगे हुआ जो जो पानी जो अन्न था वो सब दिखाई पड़ा हमको। सब अपने अपने दृष्टिकोण से प्रार्थना करने लगे। अभी हिरण्यकश्यप का वध हो गया, अभी नरसिंह इतने क्रोध में है, सारे देवताओं का प्रार्थना सुनने के बाद भी हिरण्यकश्यप नरसिंहदेव का क्रोध शांत नहीं हुआ। तब ब्रह्मा जी ने सोचा चलो लक्ष्मी जी को साथ में भेजते हैं। तो लक्ष्मी जी को आगे कि आप थोड़ा शांत करो ना, आपके पति को हम दामार से नहीं हुआ। तो लक्ष्मी जी एक से पागे कि दो से पीछे आ गए, हाँ यार हमने तो ये मैंने तो बहुत सारे रूपों को देखा है भगवान का, लेकिन ये रूप पहली बार देख रही हूँ, ऐसा क्रोध जो है मैंने देखा, अभी मुझे भी भस्म कर देंगे। तब ब्रह्मा जी ने प्रहलाद को भेजा, तो प्रहलाद महाराज प्रार्थना करते हैं, सीधा नरसिंह देव के गोद में बैठते हैं। नरसिंह देव उनका सर को चाटते हुए सूंघते हुए दिव्य आनंद को अनुभव करते हुए नरसिंह देव प्रहलाद महाराज की स्तुतियों को सुन रहे हैं। प्रहलाद महाराज की स्तुतियां बड़े अद्भुत है, स्तुतियों का सार यही है। सार रूप में प्रहलाद महाराज यही कहते हैं कि सपाद मूले पतितं तमर्दकम्। नरसिंह देव स्टार स्मॉल बाय प्रोस्टेड इन स्मॉल फीट, तो प्रहलाद महाराज को अपने गोद में बिठाए, नागे वैसे लोटस हैंड, जैसे नरसिंह देव ने अपने हाथों को प्रहलाद महाराज सर के ऊपर रखा, सारा अशुभ चीजें नष्ट हो गया, ऐसा वर्णन है भागवत में। लेकिन आचार्य कहते हैं प्रहलाद महाराज ने को अशुभ था ही नहीं, वह नाश होने की क्या कहना, लेकिन उनके सर के ऊपर हाथ रखने से जो अशुभ पहले से नाश हो चुका था अभी प्रकट हुआ। अभी तक लोग क्या बोलते हैं प्रहलाद को, अरे ये तो असुर परिवार में जन्म लिया है, लेकिन अभी भगवान के गोद में बैठे हैं, जो कार्य ब्रह्मा इवन लक्ष्मी जी नहीं कर सकी प्रहलाद महाराज करने वाले। इसका अर्थ क्या है कि नरसिंह ने जैसे प्रहलाद महाराज के ऊपर हाथ रखा तो अंदर जो उनके अंदर जो शुभ थी, जो सारा जो दैवी गुण दिव्य गुण था अभी सारा जगत के सामने नरसिंह ने प्रकाशित किया। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं ब्रह्मादय सुरगण मुनयो तो सिद्धा तत्वे गतयो वचसाम प्रवाहि नारादितुम पुरगुणै अधुनापि पिप्रुः किं पोष्टुमर्हसि समे हरे रुग्रजाता। हे भगवान, आप ब्रह्मा जी की प्रार्थनाओं के द्वारा भी शांत नहीं हुए, आप संतुष्ट नहीं कर पाए, मैं कौन होता हूँ, उग्रजाता मैं एक उग्र परिवार में जन्म लिया हूँ, और किं पोष्टुमर्हसि, मैं आपको संतुष्ट कैसे कर सकता अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा, नारादि तुम प्रभु नहीं अधुना पितृह, तो ये मेरे से कैसे हो सकता है, मैं एक तो निम्न परिवार में जन्म लिया हूँ, तो इसलिए जो भी है मनिए, मैं जानता हूँ आपका आशीर्वाद मेरे ऊपर है, इसलिए आपके बल से मैं आपका प्रार्थना कर सकूँगा। तो प्रहलाद महाराज नरसिंह देव की प्रार्थना करते हैं और नरसिंह देव थोड़ा शांत हो जाते हैं, लेकिन शांत होने के बाद भी कि सारे देवता लोग देखते थे शांत हो गए कि नहीं। तब क्या हुआ, प्रहलाद महाराज की सारे प्रार्थनाओं के गणेश जी पहुंचे। गणेश जी का वाहन क्या था, मूषिक वाहन। मूषिक वाहन से गणेश जी जैसे पहुंचे, अभी ये रूप को देख के गणेश जी एकदम आनंदित हो गए, डांस करने लगे। मूषिक वाहन के ऊपर डांस करने क्या होगा, वो पूछ गया ऐसे जो नीचे गिर गए गणेश। नरसिंह जी ने देखा है गणेश जी के ये नीचे गिरते हुए, नहीं गए एकदम विकट अट्टहासम जोर जोर से हंसने लगे। और जैसे नरसिंह जी इस प्रकार हंसने लगे, सब सारे देवता भी अभी अभी शांत है, क्योंकि जब तक हंसेंगे नहीं तब तक कैसे मालूम पड़ेगा शांत है अभी शांत। तो नरसिंह देव ने गणेश जी को कहा, ठीक है अभी आपने मुझे हंसाया तो इससे मैं आपको वरदान देता हूं। तुमने वरदान दिया, मेरा कार्य तुम करो। क्या है? सारे भक्तों के जीवन में भी अशुभ होता है उसको हटाने का कार्य मैं करता हूं। तुम भौतिकवादियों के जीवन में जो भी रुकावट होती है वो सब विघ्नहर्ता बन जाओ। हाँ, तो इस प्रकार नरसिंह देव ने गणेश जी को विघ्नहर्ता का ये जो पदवी उन्होंने प्रदान किया। साथ साथ में नरसिंह देव ने कहा कि गणेश जी को आपका चरण कमल हमेशा मेरे साथ में रहेगी, आपका आपका जो सर है मेरे चरण कमलों के साथ में रहेगी। यत् पाद पल्लव एकम विनिधाय कुंभ, इसलिए गणेश जी के आराध्य देव है नरसिंह देव। ऐसे ही नरसिंह की लीलाएं नरसिंह पुराण में भी अलग जगह अलग तरीके से वर्णन है। ऐसा नहीं कि नरसिंह देव इधर ही प्रकट होते हैं या इसी लीला में हिरण्यकेश वध करने के लिए प्रकट होते हैं, अनेकों समय अलग अलग जगह प्रकट हुए। और विलंब में जाएंगे जो नरसिंह देव के जो प्राकृतिक का स्थान है, तो इस बार जब दिसंबर हुआ, दिसंबर में पहली बार और विलंब जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जो वो जो खम्भ है जहां से प्रकट हुए वो खम्भ को चढ़ के जाना बहुत मुश्किल है। कैसे करके नरसिंह देव कृपा से अब चढ़ के गए थे तो पिलर नरसिंह देव का जो खम्भ है दूर से इतना दिखता है, वो ऐसा कहना है कि वो एक पहाड़ी है, बहुत बड़ा पहाड़ है वो पहाड़। उन लोगों का कहना यह है कि वो खम्भ का एकदम नीचे का छोटा सा भाग है, वही इतना बड़ा पहाड़ है और दो रूप में ऐसा छेदा हुआ है जहां से वो भगवान प्रकट हुए। और उधर भगवान के चरण चिन्ह है जहां एकदम पहला प्रकट होकर स्मृति में जहां चरण रखे थे वो चरण चिन्ह अभी भी है उधर। उधर जाके एक बड़ा एक फ्लैग है उसको पकड़ना पड़ता है, वो चढ़ के जाने के लिए बहुत तकलीफ होता है लेकिन प्रयास करेंगे हो जाएगा, लेकिन बहुत मुश्किल है उसको चढ़ना। प्रहलाद जिस स्कूल में गए थे वो स्कूल भी उधर है अभी भी, और उधर नीचे बड़े बड़े पत्थर के ये है और उधर कुछ ऐसी कुछ भाषा में कुछ चीजें अभी तक लिखा हुआ है दिखाई पड़ता है। और जिस जगह भगवान ने नरसिंह देव को नरसिंह देव ने हिरण्यकश्यप को पाड़ा था, वो जो हिरण्यकश्यप का महल में जाने का वो तो क्या बोलते हैं दरवाजा का क्या बोलते हैं हिंदी में क्या बोलते हैं चौकट, वो चौकट था। हाँ वो चौकट अभी भी है, खाली चौक वो चौकट इतना लंबा छोड़ा है। और उधर जो है ज्वाला नरसिंह विग्रह है, उस चौकट में ज्वाला नरसिंह है। और आगे आते जाएंगे वो जो पर्वत है उसको वेदाद्री पर्वत कहा जाता है, वेदाद्री वेदाद्री पर्वत है। वेदाद्री पर्वत क्योंकि ब्रह्मा जी आके तपस्या किए थे उधर, तपस्या करने के बाद नरसिंह देव प्रकट हुए। नरसिंह देव को ब्रह्मा जी ने कहा मेरे वेद चोरी हुए क्या करूं, नरसिंह देव चुपचाप चले गए कुछ किए नहीं। तब ब्रह्मा जी ने क्या किया, लक्ष्मी जी का पूजा किया, तो लक्ष्मी जी प्रकट हुई। लक्ष्मी जी ने रिक्वेस्ट किया, बताया नरसिंह देव को, देखो ब्रह्मा जी जो है उनको कुछ ज्ञान दो। तब ब्रह्मा जी ने को नरसिंह देव ने ज्ञान दिया। तब वो जो नरसिंह जी का विग्रह जो है उसको मालो नरसिंह कहा जाता है। और थोड़ा सा नीचे आएंगे, मैं ऊपर से वर्णन कर रहा हूँ नीचे आएंगे और एक नरसिंह देव है, नाम है वराह नरसिंह, क्रोध नरसिंह। अस्तित्व में जब वराह के रूप में भगवान आए थे, वराह ने पृथ्वी को तो उद्धार कर दिया, लेकिन वराह ने जब इनको मारा, हिरण्याक्ष को मारा, अस्तित्व में वराह देव ने नहीं मारा, ऐसा कहा जाता है हिरण्याक्ष को भी नरसिंह देव ने मारा। तो इसलिए उधर वराह नरसिंह है, नरसिंह देव है लेकिन थोड़ा सा वराह रूप में है। ये कितना नरसिंह हो गया, अभी एक हुआ ज्वाला, सबसे तीव्र ज्वाला नरसिंह। ज्वाला नरसिंह जो है वो शिवलिंग की ओर बैठे है, शिवलिंग का नीचे वाला भाग रहता है उसकी ओर बैठे है, क्योंकि भगवान का दाम को रक्षा कौन करते हैं? शिव जी करते हैं। कोई औकात है शिव जी को भगवान का दाम को रक्षा करने की? नहीं नहीं, वो नरसिंहदेव करते हैं, लेकिन सामने दिखाते शिव जी कर रहे हैं, क्योंकि शिव जी आके प्रार्थना किए थे करुणा रस स्तोत्रम। शिव जी ने प्रार्थना किया, ओविलम जाके करुणा रस स्तोत्र को उच्चारण किया, तब नरसिंह ने कहा ठीक है मैं शक्ति देता हूं मेरे धाम को रक्षा करना। तो इसलिए द्वार नरसिंह में उदय प्रकार। और थोड़ा नीचे आएंगे अहोबल नरसिंह, अहोबल नरसिंह ये भी बड़ा स्वयं प्रकट विग्रह है, जो नरसिंह क्षेत्र का जो अहोबलम का मूल विग्रह माना जाता है, मेन डेटी ऑफ नरसिंह, जो जिन विग्रह को प्रहलाद महाराज को दिखाए थे वो अहोबल नरसिंह है, शांत होने के बाद वाला नरसिंह है। तो और थोड़ा नीचे आएंगे या रास्ते में एक है करंजा नरसिंह, करंजा करते कर में अंजना मतलब धनुष पकड़े हुए है, आधा नरसिंह देव है आधा रामचंद्र है। उधर हनुमान जी आए थे, हनुमान जी ने तपस्या किया और उन्होंने प्रार्थना किया, नरसिंह देव प्रकट हुए। हनुमान जी का आप कौन हो? लेकिन मैं तो इधर का इधर के क्षेत्र तुम भगवान हूँ, तुम्हारा आराध्य हूँ। तो मुझे नहीं लगता है, मुझे मेरा जो आराध्य है वो धनुष बाण पकड़ते, ये क्या शंख चक्र गदा पद्म धारण किया, धनुष बाण चाहिए। तब उन्होंने आधा रामचंद्र का रूप धारण किया आधा नरसिंह देव का रूप धारण किया, तो करंजा नरसिंह कहा जाता है। और अहोबल में और थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो थोड़ा सा और पहाड़ों के अंदर एकदम जंगल के अंदर जाएंगे, उधर एक भार्गव नरसिंह है, परशुराम के सामने भगवान प्रकट हुए थे। ये जो भार्गव नरसिंह है, परशुराम ने बड़ी तपस्या किए और भगवान प्रकट हुए, एकदम हंसते हुए प्रकट हुए लक्ष्मी जी के साथ। परशुराम जी ने कहा नहीं नहीं मुझे वो रूप चाहिए जो रूप में आपने नरसिंह को हिरण्यकश्यप को पढ़ा था, वो रूप चाहिए। कहा वो रूप का दर्शन नहीं हो सकता। फिर तपस्या किया, बहुत तपस्या करने के बाद वापस प्रकट हुए, ठीक है मैं वो रूप को दिखाऊंगा नरसिंह को पारते हुए, लेकिन मैं हंसता हुआ रहूंगा। तो सर भार्गव नरसिंह जो है हंसते हुए है और लेकिन हिरण्यकश्यप को पार रहे, हंसते हंसते पार रहे, क्रोध नहीं है। बाद में और थोड़ा सा आगे जाएंगे और एक नरसिंह देव है जिनका नाम है चक्रवर्त नरसिंह देव। चक्रवर्त नरसिंह देव कौन है? हुआ करके थे, वो गंधर्व थे, वो अहोबिलम में आके एकदम मजे से वो गा रहे थे। तो क्या हुआ, नीचे पेड़ के नीचे वो गा रहे थे, तो अचानक नरसिंहदेव जो है वो ऊपर पेड़ की ओर बैठ के उनका सुन रहे थे, और हुआ ऊपर देखे तो तुरंत नरसिंह नीचे सबक पड़े। तो चक्रवर्त का अर्थ है कि जो वृक्ष को छत्र के रूप में धारण करके नरसिंहदेव प्रकट हुए और हु आप आशीर्वाद दिए कि आप सबसे अच्छे गायक रहेंगे, इसलिए कोई भी अच्छा गाना चाहता है तो नरसिंहदेव का आशीर्वाद चाहिए, नरसिंहदेव का आशीर्वाद आप अच्छा गा सकते हैं। इसलिए नरसिंहदेव का एक विग्रह है, एक शालिग्राम है, नरसिंह शालिग्राम व्यास जी ने मध्वाचार्य को दिया था। अभी उडुपी के नजदीक में एक जगह है सुब्रमण्यम, उधर है, उनको शांत रखने के लिए रोज सुबह गाना पड़ता है उनको। उधर के स्वामी जी वही स्वामी जी उधर के मठाधीश बन सकते हैं जो जिसके संगीत में विद्वत्ता है, तो रोज अगर उनको संगीत सुनाते तो शांत रहते, अगर वो एक दिन में नहीं सुनाए तो पूरा प्रलय हो जाएगा, ऐसा है। तो संगीत प्रिय है। तो बाद में और जाएंगे आगे, योगानंद नरसिंह है, जिस नरसिंह देव ने प्रहलाद महाराज को योग की विधि सिखाया, यानी भक्ति का योग वगैरह इत्यादि सिखाया था। ये नौ नरसिंह है, और साथ साथ में तिरुपति बालाजी भी आए थे। उसका विवाह होने के बाद पद्मावती के साथ पत्नी को कहा चलो अहोबिलम चलते हैं, तो वो भी आए। जब वो आए तो पद्मावती बहुत थक गई, चलना बहुत मुश्किल है, तो बालाजी पद्मावती को हाथ में लेके पहुंचे, तो लगे अभी मैं भी नहीं जा सकता हूँ। मैंने कहा चलो नीचे ही हम लोग एक विग्रह को स्थापना करेंगे। बालाजी स्वयं वेंकटेश्वर बालाजी ने वेंकटेश्वर स्वामी ने एक विग्रह बनाया था, वो प्रहलाद वरद विग्रह को बना चुके। और एक नरसिंहदेव है जिनका नाम है पावन नरसिम्हा। ये पावन नरसिंहदेव जो है वो भरद्वाज ऋषि कोई पाप कर दिए थे, महापातक किए थे, उसको शुद्ध करने के लिए उधर तपस्या किए थे, तो भगवान उधर पकड़ के, इसलिए उनका नाम है पावन नरसिम्हा। तो वो सबसे दूर है, चल के जाना भी बहुत लंबा है, गाड़ी पे भी जा सकते लेकिन गाड़ी पे जाना भी बहुत तकलीफ होता है। और ये पावन नरसिम्हा उधर वो एकदम बिल्कुल अलग पहाड़ों के बीच में है, वो तिरुपति से आने वाले पहाड़ों के से जुड़ा हुआ है, उसको गरुड़ाद्रि कहा है। तो गरुड़ शैल मध्य गरुड़ जी तपस्या किए थे, उसके वजह से और एक नरसिंहदेव प्रकट हुए। तो ऐसे इन नौ नरसिंह हैं। और ये पावन नरसिंहदेव के पास कृष्ण और पांडव भी पहुंचे थे, वो पांडव उधर कुछ शिकार करने गए थे, कृष्ण ने कहा इधर शिकार मत करो, नरसिंहदेव का क्षेत्र है, डेंजरस है, इधर चलो जल्दी से जल्दी। वैसे कृष्ण का इधर एक विग्रह है, तो वैसे अहोबिलम क्षेत्र जो है नरसिंह क्षेत्र है, कई भक्तों को मौका मिले तो आपको जाना चाहिए और नरसिंहदेव का बड़े करना चाहिए। भगवान रामचंद्र भी अहोबिलम गए थे और उन्होंने बहुत सुंदर स्तोत्र गाया, पंचामृत स्तोत्रम, यानी जो भगवान का नरसिंहदेव का अभिषेक होता है उस समय भगवान रामचंद्र की नरसिंहदेव की प्रतिष्ठा जो है वो जाता है। वैसे शंकराचार्य गए थे, शंकराचार्य जाके उन्होंने स्तोत्र की रचना किया, बहुत सुंदर स्तोत्र है जो करावलंब स्तोत्र कहा जाता है। वैसे दो करावलंब स्तोत्र है, तो नरसिंह का जो शंकराचार्य के द्वारा रचित करावलंब स्तोत्र को मैं आते में उच्चारण करके जो आज का जो प्रोग्राम है समाप्त करता हूँ। तो वैसे आपके पास सबके पास कागज होगा तो अच्छा था, लेकिन मैं थोड़ा तैयार नहीं कर पाया, वो नरसिंह करावलंब स्तोत्र को खाली मैं उच्चारण करूंगा, आप सुनिएगा। श्रीमत् पयोनिधि निकेतन चक्रपाणे भोगींद्र भोगमणिराजित पुण्यमूर्ते योगीश शाश्वत शरण्य भवाब्धिपोत लक्ष्मी नृसिंह मम देहि करावलंबम ब्रह्मेन्द्र रुद्र मरुदर्क किरीट कोटि संघटितांग्रिकमलामलकांतिकांत लक्ष्मी लसत्कुचर सरोरुहराज हंस लक्ष्मी नृसिंह मम देहि करावलंबम संसार दावदहनाकुल भीषणोरु ज्वालालिबेर्रदिदग्धतनूरहस्य त्वत्पादपद्मसरसिं शरणागतस्य लक्ष्मी नृसिंह मम देहि करावलंबम संसारचालपतितस्य जगन्निवास सर्वेन्द्रियात्तबलिबडिसागरजशोपमस्य रोत्कम्पितप्रचुरतालकमस्तकस्य लक्ष्मी नृसिंह मम देहि करावलंबम संसारकूपमतिघोरमादमूलम् संप्राप्य दुःखस्तदसर्पसमाकुलस्य दीनस्य देव कृपया पदमागतस्य लक्ष्मी नृसिंह मम देहि करावलंबम संसार भीकर करीन्द्र कराग्रगात निष्पीड्य मानव पुष सकलार्तिनाश प्राणपयान भव भीति समाकुलस्य लक्ष्मी नृसिंह मम देहि करावलंबम संसार सर्प विषदिग्ध महोग्र तीव्र दंष्टागर कोटि परिदष्ट विनष्ट मूर्ते नागारि वाहन सुधाब्दि निवास सौरे लक्ष्मी नृसिंह मम देहि करावलंबम संसारक्षम गबीज मनंत कर्मा शाकायुतम कर्णपदमनंग पुष्पम आयुक्त दुःख परिणम पतितम दयालो लक्ष्मी नृसिंह मम देहि करावलंबम संसार सागर विशाल कराल काल नक्रग्रह ग्रसित निग्रह विग्रहस्य व्याधस्य राग निचयोर्मि पीडितस्य लक्ष्मी नरसिंह मम देहि करावलम्बम् संसार सागर निमज्ज मुह्यमानम् दीनं विलोक्य विभो करुणानिधे माम् प्रह्लाद खेद परिहार कृतावतार लक्ष्मी नरसिंह मम देहि करावलम्बम् संसार घोर गहने चरतो मुरारे मा घोर भीकर विभीकर मृग प्रचुरार्थितस्य आर्थस्य मत्सर निदग्ध सुदुःखितस्य लक्ष्मी नरसिंह मम देहि करावलम्बम् बुद्ध्वा गलेयमबत बहुकर्जयन्तः तर्जयन्ति यत्र भवपाशशतैर्युतैर्माम् एकानिनम् परवशचकितम् दयालो लक्ष्मी नरसिंह मम देहि करावलम्बम् लक्ष्मीपते कमलनाभ सुरेश विष्णो यज्ञेश यज्ञमधुसूदनविश्वरूप ब्रह्मण्यकेशव जनार्दन वासुदेव लक्ष्मी नरसिंह मम देहि करावलम्बम् एकेन चक्रम परेण करेण शङ्खम् अन्येन सिन्धुतनयामवलम्यदिष्टम् वामेतरेण वरदाभयपद्मचिह्नम् लक्ष्मी नरसिंह मम देहि करावलम्बम् अन्धस्य मे हृत्विवेकमहाजनस्य चौरेत्महाबलिभिरिन्द्रियनामधेयै मोहान्धकारकुहरे विनिपादितस्य लक्ष्मी नृसिंह मम देहि करावलम्बम् प्रह्लादनारद पराशर पुण्डरीक व्यासादि भागवत पुङ्गवहृन्निवास भक्तानुरक्त परिपालन पारिजात लक्ष्मी नृसिंह मम देहि करावलम्बम् लक्ष्मीनृसिंहश्चरणाब्ज मधुव्रतेन स्तोत्रम् कृतम् शुभकरम् भुवि शङ्करेण एतत्पठन्ति मनुजा हरिभक्तियुक्ता सेयान्ति तत्पादसरोजमखण्डरूपम् नमस्ते नरसिंहाय नमस्ते नरसिंहाय दला दला ददायिने दला दला ददायिने हिरण्याकाशे पूर्वक्षः शीलडङ्का न कालाये सो नरसिंहा सो नरसिंहा सो नरसिंहा भरतो नरसिंहा यतो यतो यामि ततो नरसिंहा हे नरसिंहा हृदये नरसिंहा सिंह मदें चरणं प्रपद्ये नरसिंहामदें शरणं प्रपद्ये तव करकमलवरेणका अद्भुतशृङ्गा कालिका हिरण्यकशिपु कानुभृङ्गा केशवधीता हरिरूपा जय जगदीश जय
जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। केशवदेता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव। प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज।
प्रभुपाद विघ्ननाशक नरसिंहदेव भगवान की, भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज की, श्रील प्रभुपाद की। आज शाम को 4 बजे से हम